यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितई गौरांगो नितई गौरांगो नितई गौरांगो नितई गौरांगो गौर हरि नितई गौरांगो गौर हरि नितई गौरांगो गौर हरि जय सच्चिदानंदन गौर हरि जय सच्चिदानंदन गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सच्चिदानंदन गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 नितई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी भगवान की श्री गौर निताई पंच तत्व भगवान की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की श्री ऋतु द्वीप धाम की श्री विद्यानगर धाम की जय जय श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. सब लोग मिलकर एक बार हृदय से पुकारिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। एक बार और पुकारिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे आपके बीच में बैठने का मौका दिया, और सबका इसलिए भी धन्यवाद है कि आप लोग मायापुर यात्रा में आए, गौरांग महाप्रभु के निज धाम में आप आए हैं। इस धाम में कोई माया के लिए स्थान नहीं है, इस धाम में त्रिगुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस धाम में ज्ञान और वैराग्य को इतना महत्व नहीं है जितना भक्ति को महत्व है, और इस धाम में मुक्ति के बारे में कोई नहीं सोचता है। सब चीज दुय्यम यानी सेकेंडरी बन जाती है, और इस धाम में कोई अपराध भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, सिवाय वैष्णव अपराध के, और कोई अपराध यहाँ पर रजिस्टर नहीं होता है। धाम अपराध भी नहीं होता है और भगवान का अपराध भी नहीं होता है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है इस धाम का, औदार्य धाम। श्री वृंदावन धाम को क्या कहते हैं, माधुर्य धाम, लेकिन वहां बहुत कड़क नियम होते हैं। वहां पर कोई धाम अपराध, भगवान के मूर्ति का अपराध, इस प्रकार के अपराध वहां पर करेंगे तो एक लक्ष गुना उसका परिणाम जीव पर होता है, ओनली 100,000 टाइम्स, नॉट मोर। लेकिन कलयुग की पतित अवस्था को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आते हैं और अपना औदार्य जो है वो दिखाते। जब प्रभु रामचंद्र अपने बाण लेकर राक्षसों का संहार कर रहे थे वन में, तो सीता देवी ने उनको रोका, उन्होंने कहा आप तो होल सेल में राक्षसों का वध कर रहे हो। तभी वो दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे थे, तो सीता देवी ने बोला मुझे वादा करो आप ऐसे ही होल सेल में इतने बड़े संख्या में राक्षसों के वध नहीं करेंगे। तो प्रभु रामचंद्र ने उनको वरदान मतलब वचन दिया कि इस अवतार में तो मैं धनुष धारण कर चुका हूँ, अभी मैं वध करते रहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं फोर्थ गियर में आ गया हूँ, अभी आप मुझे बोलेंगे वापस गाड़ी रोको तो मुमकिन नहीं है। अगले अवतार में मैं राक्षसों को शस्त्र अस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं हाथ से ही मारूंगा। तो जितने भी दिन ब्रज में रहे कोई शस्त्र अस्त्र का उपयोग किया गया उन्होंने नहीं, कभी मुक्के से, कभी लात से, कभी हाथ से, कभी इससे कभी उससे, ऐसे ही उन्होंने राक्षस का वध किया। तो राधा रानी ने उनको रोका, बोले आप तो ऐसे ही वध करते जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं फिर भी परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम इसी के लिए आया हूँ, अगली बार बजे मैं आऊंगा ना तो कोई शस्त्र अस्त्र लेके ही नहीं आऊंगा और राक्षसों का वध भी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा रहा आपका। अगली बार बजे आऊंगा जब भी तो आपका भाव लेके आऊंगा और सबका मैं विनाश करूंगा, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करूंगा, राक्षसों का विनाश नहीं करूंगा। तो ये भगवान का जो अंदर का जो औदार्य है यहां पर पूर्णता से प्रकाशित है। अभी समझो कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, हर प्रकार का वरदान दे सकता है, जो मांगे उसको दे सकता है, जो चाहे वो दे सकता है, और वो बहुत उदार भावना में है, अति उदार भावना में है, और वो बोल रहे हैं ले लो जितना चाहिए उतना ले लो, मांगो और ले लो, और हम कहेंगे नींद आ रही है, टाइम नहीं है, भूख लग रही है, बिजी है, ऐसा बोलेंगे तो उसको क्या कहते हैं? परम दुर्भाग्य कहते हैं। तो इस परम दुर्भाग्य को देखते हुए गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु परम करुणा का रूप देकर आए हैं। किसी भी राक्षस का उन्होंने वंदे किया है, भयंकर से भयंकर राक्षस भी थे जगाई मधाई, उनके अंदर के राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाकर सारे कर्मों को नष्ट करके उनको तत्क्षण कृष्ण प्रेम, वो भी कैसा है, भाव विभोर होने वाला कृष्ण प्रेम, शुरुआत वाला नहीं, चरम स्थिति वाला, एक क्षण के पहले अनंत कर्मों का पापों का सागर उनके ऊपर है और एक क्षण के बाद में रो रहे हैं प्रेम की वजह से, कर्म वर्म दूर हो गए, भाग गए सब। ऐसी करुणा के स्थान पर हम लोग आए हैं। क्या होता है ना, अभी थोड़ा बस में जर्नी किया, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया, या थोड़ा सा धूप में चलना पड़ा, तो हमारा जो एनर्जी है ना वो ऐसा ड्रेन हो जाती है और लगता है अभी और 2 घंटा सुनना भी पड़ेगा, और तो कुछ दिखाएंगे नहीं, बैठ के सुनाएंगे, बोले यहाँ पर बस जाती नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा नंबर हो गया बस का, और कोई ऑलरेडी पहुँच गए हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी बाह्य परिस्थितियों की वजह से, शरीर के स्थितियों की वजह से, उसको कहाँ लेके जा रहे हो खाली? तो बाह्य स्थितियों के कारण हमारी चेतना जो है ना वो थोड़ा सा कमजोर हो सकती है, लेकिन ऐसा धाम है, मैं आपको सबको विनती करता हूँ कि यहाँ पर कितनी भी कष्ट हो आपको, और होंगे आगे भी होंगे, भी धूप भी आएगी कि वर्षा भी हो सकती है, क्या भी बीच में सांप भी आ सकता है, तैयार रहो आप, सब होता है यहाँ पर, गाय आती है, भैंस भी आती है, सांप भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं, सब आ जाते हैं। लेकिन ये सारी स्थितियों में होते हुए भी हमको ना अपनी जो एंटीना है ना स्पिरिचुअल, वो उसे ऑन रखना पड़ेगा, पूरे 5-6 डंडे के साथ रेंज होनी चाहिए उसकी, क्योंकि इतनी कृपा यहाँ बरस रही है, वो ऐसे वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कोई इसमें गारंटी कह सकता है क्या कि मैं अगली बार भी यहाँ पर आऊंगा, जब भी यात्रा होगी फिर मैं आऊंगा, कह सकता है क्या? अरे जिएंगे तो आएंगे ना, और कौन कह सकता है कि मैं जीऊँगा अगली यात्रा तक? 2013 में ब्लास्ट यात्रा हुई थी, अभी 2017 में हो रही है, आगे पता नहीं, अभी आप यहाँ पर हो, जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, सांस रहेगी नहीं रहेगी, शरीर साथ देगा नहीं देगा, नो वन नोज। इसलिए अपनी चेतना को बटरो और इस धाम में जो अनंत कृपा आपके लिए उपलब्ध है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। देखो अभी इतने लोग, 100-150 लोग वहां पर प्रसाद बना रहे हैं, वो किधर यात्रा में नहीं आते, वो क्यों बना रहे हैं? ताकि आप लोग प्रसाद खाए, आपकी क्षुधा शांति हो और आपकी चेतना एकदम 5-स्टार रूप में उपलब्ध हो, है ना? इसलिए नहीं बना रहे कि आप प्रसाद खाओ और सो जाओ इसलिए बना रहे हैं कि आपकी गति जो है ना वो अड़े नहीं भूख की वजह से, इसलिए आपको सुबह सुबह 6 बजे दे रहे हैं, मतलब 2 बजे उठ के वो पहला बैच जो है उसको निकालना शुरू कर देते हैं। कितने लोग कितना कष्ट कर रहे हैं, कुछ लोग खाली बस का गिनती कर रहे हैं, बस किधर गई, टर्न किया नहीं किया, राइट में घुमा क्या, सिग्नल पास किया क्या, ट्रैक पास किया, नदी का ब्रिज पास किया, गौरांग ब्रिज पास किया कि नहीं किया, कॉन्स्टेंट दे आर इन एंग्जाइटी। भक्त लोग असुविधा में तो नहीं है, तो हम सब इन सब के प्रति हमको ऋणी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग आपके पीछे लगे हुए हैं जो आपकी यात्रा सुखद करने के लिए और जितने हो सके उतनी दिव्य आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा कम से कम कृतज्ञता के विषय में इतना तो रुख होना चाहिए हमारा कि हम लोग कथा में, कीर्तन में, दर्शन में, सब जगह एकदम सतर्क रहें, जागरूक रहे, ऐसे भूखे प्यासे की तरह रहे जैसे कान में भूख लग रही है, पूरे सुनने के लिए व्याकुल हैं। इसको कहते हैं लौल्यम, और रूप गोस्वामी बताते हैं कि लौल्य जो है वो भक्ति और प्रेम के मार्ग में प्रगति करने के लिए एकमात्र ऐसा योग्यता है। Eagerness is a price for Krishna consciousness. और यहां पर अगर आदमी ईगर नहीं हो सकता तो और कहां होगा, और कहां इतनी कृपा है जो यहां पर है। हाँ, वृंदावन धाम, मायापुर धाम और जगन्नाथपुरी धाम सब सेम है, अभिन्न है, लेकिन फिर भी मायापुर धाम तो मायापुर धाम ही है, क्योंकि तो बाकी धामों में अपराधों की गिनती हो जाती है, स्पेशल लोग बिठाए वहां पर, यहाँ पर कोई कुछ करेगा तो अलग लोग बिठाए जो उनको 1 लक्ष्य बार उनको उसका परिणाम देना है, ये सब भी रखना है। यहाँ पर उन लोगों को जॉब नहीं है, यहाँ पर केवल जो भक्ति कर रहे हैं उनकी गिनती करने के लिए भक्तों को बिठाए हैं। इतने कृपालु महाप्रभु चैतन्य, घर तक छोड़ दिया उन्होंने अपना, विष्णु प्रिया जैसी सुंदर पत्नी को भी त्याग दिया, सच्ची माता जैसी माता को त्याग दिया, श्रीवास पंडित जैसे सुंदर नवद्वीप के भक्तों को भी त्याग दिया उन्होंने। खुद को बहुत कष्ट हुआ उनको, उनको छोड़ते समय, लेकिन फिर भी आप और हमारे प्रति अपार करुणा के कारण उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। अपने सुंदर घुंघराले जो दिव्य उनके केश थे वो भी उन्होंने मुंडवा दिए, तो सन्यासी को धारण किया। कितना त्याग किया भगवान ने, हाँ प्रभु रामचंद्र ने वनवास स्वीकार कर लिया हमारे लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर गोल्डन शरीर होते हुए, इतना सौंदर्य, इतना ऐश्वर्य, इतनी परिपूर्णता होते हुए भी हम जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए उन्होंने घर त्याग कर लिया और सन्यास ले लिया। तो ये सभी के प्रति सतर्क रहना और सभी के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया उसके वजह से हमको आज इतना सब लाभ मिल रहा है। और यहाँ के भक्त लोगों ने कुछ स्थान बना के रखे हैं, इनको मेंटेन करके रखा है, इसलिए हमको आने के बाद कुछ नजर आता है, नहीं तो वो भी लुप्त हो जाएगा। जब हमारे पोतों को हम लेके आएंगे यहाँ पर, बताएंगे यहाँ पर ना ऐसे ऐसे हुआ करता था और ऐसे ऐसे हमने देखा है, अभी नहीं है, अभी बिल्डिंग बन गई है और फ्लैट बिक रहे हैं, ऐसा बताना पड़ेगा। तो आज अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है हमको आज भी, क्योंकि 30 साल पहले जब हम आए थे तो कुछ अलग नजारा था और आज डिफरेंट है, और वो प्रगति की ओर नजारा नहीं है स्पिरिचुअली, वो अधोगति की ओर ही है उनकी। तो आगे जाकर क्या मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या लाभ होगा, कितना हम ले पाएंगे, हाँ पता नहीं हमको कुछ। इसलिए सबको विनती है कि अगर नींद आती होगी तो पेट के सहारे खड़े हो जाओ, बाजू में किसको नींद आती होगी उसको जगाओ, क्योंकि इस धाम का जो एक एक क्षण है ना, एवरी सिंगल मोमेंट इज पोटेंशियली एबल टू गिव यू लव ऑफ गॉडेड। एक एक क्षण आपको यहाँ का जो आप बिता रहे हैं सतर्क अवस्था में, वो आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा दे सकता है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन का गौर धाम में बिताया हुआ क्षण है, उसके अंदर भगवान ने इतनी शक्ति समाय के रखी हुई है कि हम सब लोग एक साथ प्रेम में विभोर होकर झूम सकते हैं। तो अभी इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं, अभी हम ऋतु द्वीप में बैठे हैं, ऋतु द्वीप, और ये आचार्यों के अनुसार जो है वो श्री राधा कुंड का यहां पर प्रकटीकरण है। आप लोगों को जानते हैं सब लोग, आप जब राधा रानी ने अपने हाथ से नवद्वीप मायापुर बनाया, अपने हाथ से बनाया मतलब सिंचन किया, बोया उसको, नदी नाले सॉरी नदी और कुंड सरोवर जितने भी यहाँ पर प्रकटीकरण है वो सब राधा रानी के अपने हाथ से बनाया हुआ है। जो ब्रज के बरसाने के गहवर बन से मिलता जुलता है वो भी गहवर बन भगवान राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। केवल श्री कृष्ण भगवान को आनंद देने के लिए, रिझाने के लिए बनाया है, और फिर उन्होंने वहां पर नयार तैयार करने के बाद में बंसुरी बजाई है, और बंसुरी बजाने के बाद श्री कृष्ण उससे आकर्षित होकर यहाँ पर आए हैं, और इस दिव्य धाम का नजारा देखकर वो इतने प्रभावित हो गए हैं, इतने भाव विभोर हो गए, उन्होंने राजा रानी को वादा किया कि मैं कभी भी इस धाम को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, और जितने भी मेरे भक्त हैं ऋषि मुनि हैं सबको यहां पर मैं आके बसाऊंगा, और जितने भी तीर्थ हैं सभी धामों के, जितने ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वो सब आकर यहां निवास करेंगे। इसका मतलब जितने भी दुनिया के विश्व के तीर्थ हैं वो सब नवद्वीप धाम में बसे हुए हैं, अलग अलग अपना स्थान लेकर बैठे हुए। तो यहां पर राधा कुंड आकर प्रकट हुआ है। संक्षेप में आप जानते हैं कि भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया और गोपियों ने उन्हें मिलना मना कर दिया कि आपने धर्म के प्रतीक बैल का वध कर दिया है, इसलिए आप बहुत बड़े पापी हो गए हो, पाप धारण किया आपने, हमारे इसे मिलने के आप योग्य नहीं रहे अभी। तो उन्होंने कहा कि आपको जाकर सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर आप हमसे मिलने योग्य हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं सभी धामों को, तीर्थों को, पहाड़ों को, सरोवरों को यही बुला लेता हूं। तो सब वहां प्रकट हो गए और सबने भगवान ने सबको अपने एक जगह पर अरिष्टासुर के वो क्या बोलते पंजा बोलते उसको नहीं खूर खूर उसका जो चिन्ह था उधर ही खुदाई करके एक कुंड बनाया उसका नाम क्या बड़ा श्री श्याम कुंड धाम की। उसके बाद जब सखियां मिलने आई तो भगवान ने क्या किया अभी आपको पाप लग गया है क्योंकि आपने पापी राक्षस के पक्ष में मुझसे विवाद किया है उनका पक्ष लिया है आपने इसलिए आपको भी शुद्ध होना पड़ेगा। भाई जब अगर आपकी इच्छा है तो मेरे कुंड में सब लोग ऑलरेडी विराजमान हो गए तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हो। तो नहीं आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे क्योंकि आपके कुंड में आपने स्नान करके अरिष्टासुर को मारने का पाप छोड़ दिया है उससे हम लोग टच नहीं करना चाहते हम अपना कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपने कंगन से सभी सखियों ने अपने कंगन तोड़ तोड़ कर कंगन से गड्ढा बनाया इसलिए उसका नाम पहला पड़ा है कंकण कुंड। और फिर लाइन लगाई वहां से मानसिक गंगा उसके पहले प्रकट हो गई थी वहां पर सखियों की लाइन लगाई आज भी वो 2 किलोमीटर का अंतर है तभी कितना होगा नोबडी नोज। और मानसी गंगा में जल भर के एक एक के हाथ में ट्रांसफर करते करते वो गड्ढे में डालने लगी इतने थक गए कि सबके कपाल प्रदेश पर वो पसीने के बिंदु इकट्ठा हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान सब सखा खड़े हैं और एक तरफ सब दिव्य धाम नदियां कुंड सब खड़े हैं हाथ जोड़कर वेट कर रहे हैं कभी सेवा मिलेगी। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप इतना कष्ट क्यों ले रहे हो इतना पसीना बह रहा है आपका श्वेत बिंदु बह रहे हैं ये लोग सब खड़े हैं आपकी सेवा में आप इनको मौका दो सेवा करने का। और एक को इशारा करते हैं चक्रवर्ती बात बताते हैं एक विशेष देवता को बोलते हैं जाओ बात करो फिर वो जाके बहुत कम से कम 20 श्लोक बोलते हैं प्रार्थना में कितनी दूर से हम आए हैं आपकी सेवा की अभिलाषा से हमें सेवा दीजिए आप आपकी सेवा करना चाहते हैं। फिर परम दयालु राधा रानी दया से व्याकुल होकर उनको हाँ कहती है और वो सब लोग तुरंत उस जो गड्ढा बना था उसमें प्रवेश करते हैं। हमको दिखाई पड़ता है केवल जल लेकिन वहां पर केवल जल नहीं है मतलब जल रूपी जितने धाम है ऐसे नदियां कुंड सरोवर समुद्र केवल उतना नहीं है पर्वत भी है वहां पर वन भी है हर प्रकार के जितने धाम होते हैं वो सब प्रकार के धाम वहां विराजमान है और जल हमको खाली दिखाई पड़ता है लेकिन सब वहां पर विराजमान है। जैसे ही विराजमान होने लगे वहां से श्याम कुंड का बांध फूट कर जो है यहाँ पर पानी अंदर प्रवेश किया और वहां से सभी धाम ने प्रवेश किया और इतना सुंदर कुंड बना उसका नाम क्या बना श्री राधा कुंड धाम की। जब बना तो कृष्ण भगवान ने उसको वरदान दिया कि ये राधा रानी का द्रव रूप प्रेम है मेरे लिए साक्षात प्रेम जो है वो द्रव रूप रूप में प्रकट हो गया है और राधा रानी को जितना राधा रानी मुझे जितनी प्रिय है उतना ही ये कुंड मुझे प्रिय होगा। जो व्यक्ति यहां पर आएगा और स्नान करेगा आचमन करेगा स्पर्श करेगा जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है उतना ही वो व्यक्ति मुझे प्रिय होगा और जो यहाँ पर स्नान करेगा संग करेगा राधा कुंड का वो राधा रानी के और मेरे द्वारा प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा। और बता दिया कि ये मुझे सबसे बड़ा प्रिय स्थान होगा पूरे ना केवल ब्रज मंडल में पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रिय मेरा स्थान जो है वो राधा कुंड होगा। ऐसे बहुत सारे वरदान दिए और उस स्थान को परमोच्च दिव्य स्थान के रूप में स्थान भी दे दिया द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल होली प्लेसेस। वो राधा कुंड श्याम कुंड की जो एरिया है ना वहां पर ऐसी कृपा होती है कि हम लोग विचार नहीं कर सकते उसका। एक बार वहां पर ऐसे राधा रानी भाग भाग के आ रही थी तो पैर में कुछ लगा उनके तो देखा तो ललिता से पूछा क्या है तो उन्होंने कहा कि ये एक क्या बोलते हैं उसको सुअर होते हैं ना सुअर मादा सुअर कल उसका देहांत हुआ था वो ऐसा गिर पड़ी है वो आपको अंगूठे को उसका स्पर्श हुआ है। तो राधा रानी कहती है तुरंत उसको अपने पार्षदों में ले लो। तो सुअर की योनि में जो जीव था वो तुरंत राधा रानी के सखी वृंद में प्रवेश किया उसने। वैसे ही एक भेड़िया था उसको बच्चे परेशान कर रहे थे और भेड़िया को बहुत लंबी कहानी है उसको गड्ढे में डाल दिया ऊपर आग लगा दिया सब कुछ वो चिल्ला रही थी बेचारी जीवन के लिए और ये राधा रानी के कुंड के पास ही है तो राधा रानी को कान में सुनाई पड़ा कोई रो रहा है कोई पुकार रहा है आर्त भावना में कष्ट भोग कर पुकार रहा है जाओ देखो देखो। तो देखते तो क्या कुछ बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं गड्ढे में डाल दिया भेड़िया को तो सखियों ने उन बच्चों को भगा दिया आग निकाल के भेड़िए की मुक्त कर दिया और उठाकर रोते हुए भेड़िया को भेड़िया बोलते हैं उसको लोमड़ी बोलते हैं लोमड़ी हाँ शी फॉक्स उसको राधा कुंड के पास लेके आए। राधा रानी ने तुरंत उस लोमड़ी को अपने सखी के रूप में
प्रवेश दे दिया उधर तुरंत, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो कुसुम सरोवर से आगे जितना भी घेरा है ना, वो सब राधा कुंड घेरा है। वहां पर अनंत 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 कृपा प्राप्त होती रहती। वो धाम यहां पर प्रकट हुआ है, आज आपके सामने प्रकट नहीं है वो, लेकिन वो राधा कुंड का ही स्थान है। तो वो राधा कुंड में, राधा कुंड में क्या फर्क है? वो राधा कुंड में परम कृपा अवेलेबल है, यहां पर भी परम कृपा अवेलेबल है, लेकिन वहां पर अपराध गिने जाते हैं, यहां पर नहीं गिनते हैं। वो राधा कुंड जहां पर माधुर्य का परिसीमा है, वो यहां पर औदार्य की परिसीमा बनकर यहां प्रकट हो गए। जितने भी धाम जो अपने अपनी जगह पर हैं, उनका अपना महात्म्य है, वो जब यहां पर आकर आश्रय लेते हैं और आप लोग उनके पास जाते हो, उस धाम के पास, तो वो औदार्य से आपको संपूर्ण कर देते हैं। माधुर्य देते ही हैं, प्रेम भक्ति देते हैं, लेकिन औदार्य की भावना से हमको संपृक्त कर देते हैं। तो ये राधा कुंड को सब लोग हम प्रणाम करेंगे, मन से हाथ जोड़कर सब लोग प्रणाम करेंगे। राधा कुंड का स्मरण करने मात्र से भी जन्म जन्मांतर के संचित नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती है, राधा रानी के चरणों की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो श्रीमती राधा रानी की, ऐसे कोई आचार्य नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय के आचार्य नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है जिनके आचार्य राधा कुंड किनारे नहीं आए हो, कुछ समय के लेकिन हो नहीं आए हो, ऐसा नहीं हुआ है। जितने भी संप्रदाय हुए हैं, जितने भी हमारे संप्रदाय के जितने भी संत हुए हैं, सब लोगों ने राधा कुंड के किनारे कुछ समय के लिए क्यों न हो भजन किया हुआ है। और रूप गोस्वामी के अनुसार, उपदेशामृत के अनुसार और कुछ कुछ भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भी राधा कुंड ही हमारा अंतिम अंतिम गंतव्य स्थान है, लास्ट स्टॉप, वो जीवन का लक्ष्य है वहां पर पहुंचना। हमें शायद शरीर से वहां रहने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम मन से जरूर वहां रह सकते हैं, राधा कुंड के किनारों की याद कर सकते हैं, राधा कुंड के जल की याद कर सकते हैं, राधा कुंड के दर्शन का याद कर सकते हैं, राधा कुंड की महिमा का याद कर सकते हैं, राधा कुंड में हुई लीला की याद कर सकते हैं। वो चौथे स्तर का धाम वास है। जो लोग धाम में नहीं रह सकते हैं, वो कहीं भी दुनिया में रहते हुए, पतित से पतित जगह पर भी रहते हुए, धाम की स्मृति को बरकरार रखते हुए धाम का निवास निरंतर कर सकते हैं। और वो निवास करने के लिए जब भी आप धाम में हो, अभी आप जितना भी समय यहाँ पर हो, जितने भी दिन यहाँ पर हो, जो भी लाभ ले रहे हो, प्रसाद के रूप में, जल के रूप में, स्नान के रूप में, सोने के रूप में, रूम के रूप में, कथा के रूप में, दर्शन के रूप में, दीपदान के रूप में, जिस भी भाव प्रकार से आप धाम का वास ग्रहण कर रहे हो, उस पर आप अगर एकाग्रता रखोगे और चिंतन करोगे उसके ऊपर, तो ही स्मृति के रूप में वो धाम आपके साथ में, आपके यहाँ आपके साथ आएगा। अगर यहाँ पर रहते हुए आप इनअटेंटिव रहेंगे, अगर ध्यान नहीं होगा आपका, तो उसकी स्मृति कैसे बनेगी? स्मृति तब बनेगी जब आप किस चीज का चिंतन करते हो। अगर मैं आपके एक नंबर बता दिया और आपको अगर याद रखना है, तो वो नंबर पे चिंतन नहीं करेंगे तो आपको याद कैसे आएगा? आपने कितना नंबर बोला था? गाड़ी का नंबर क्या था प्रभु जी? बोला था गाड़ी आने वाली है हमारे लिए, याद नहीं आएगा। जब वो सुनेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तो उसका स्मृति में रूपांतर हो जाएगा। और अल्टीमेटली भगवान ने क्या कहा है? अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण श्रुति, या अंते नारायण कीर्तन, ऐसे नहीं कहा है, या अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जोर किस पे दिया? सबसे स्मरण पे। तब अगर मुंह से बोल सकते नहीं हो, गूंगे हो गए मरने के समय, बहरे हो गए हो, पैरालिसिस हो गया आपको, लेकिन स्मरण जरूर कर सकते हैं। अनकॉन्शियस भी आपका शरीर होगा तो भी आपकी आत्मा हमेशा सचेतन रहती है और वो स्मृति आपको दे सकती है, अगर आपकी इच्छा हो, आपने मेहनत की हो तो। तो ये समय है वो स्मृति को प्राप्त करने का, पहले श्रवण के माध्यम से, फिर कीर्तन के माध्यम से, फिर एकाग्रता से कल्टीवेशन यानी परवरिश करते हुए उस स्मृति को यहाँ ही निर्माण करना है आपको। यहाँ से जाते वक्त बस में आपको याद करना है, वहां से मायापुर पहुंचते हुए याद करना है, जब ट्रेन में फ्लाइट में बैठेंगे तो भी याद करना है कि कहाँ कहाँ गए थे। इसलिए कुछ लोग लिखते हैं, बहुत जरूरी है लिखना, हमको भी कैसे याद रहेगा, हमने भी पढ़ के आए लेकिन घर में कल पढ़ा तो आज याद नहीं आता है, तो हमने भी लिख के लाया है। तो ये सब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके स्मृति के रूप में धाम आपके चेतना में प्रवेश करेगा और निवास करेगा, और जब भी आपको समय होगा तब आपको उसकी याद दिलाएगा। जब आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो आपको उसकी याद दिलाएगा। इसलिए एकदम जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जो करना है करिए उसके लिए। तो ये राधा कुंड की स्मृति आप लेके जाइए। दूसरी बात यह है कि ये जो धाम है नवद्वीप के, ये नव द्वीप है ना यहाँ पर, तो हर एक द्वीप पर एक नवदा भक्ति का अंग जो है प्रकट हुआ है। तो ये धाम जो है ऋतु द्वीप, जो राधा कुंड का प्रकटीकरण यहाँ पर है, वो अर्चनम नाम के नवदा विधि का प्रतिनिधि है। यहाँ पर डीटी वर्शिप जो है वो कृपा वहां पर प्रकट हुई है। रूप गोस्वामी के अनुसार 64 तत्व बताए हैं शुद्ध भक्ति के, उसमें 5 सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं, उसमें से एक आता है डीटी वर्शिप, अर्चना, अर्च विग्रह पूजा। नारद मुनि को राधा रानी ने लीला करके वृंदावन में एक स्थान दिया है, नारद पंचरत्र का विधि लिखने के लिए, वो है नारद कुंड कुसुम सरोवर के आगे है, लेफ्ट में 1 किलोमीटर। उनको दक्ष के शाप को होते हुए भी अपने धाम में, तो शाप से मुक्त थे वो, आदेश दिया उनको दर्शन देने के बाद कि आप जाओ और पंचरात्र का विधि का लेखन करो। तो उन्होंने वहां पर कई समय, बहुत समय तक रहकर एकाग्रता से भजन करते हुए नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, वहां रहते भजन करते हुए इस पंचरात्रि विधि का लेखन किया है, और उसी को हम लोग अपनाते हैं जिस तरह से हम डीटी वर्शिप करते हैं। और डीटी वर्शिप क्यों करते हैं कि भगवान के विग्रहों की प्रत्यक्ष सेवा करने से हम काम वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो भगवान के दिव्य शरीर का स्पर्श और सेवा करने से वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम वो डीटी वर्शिप करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे जो डीटी वर्शिप करते हैं वो भगवान के बहुत करीब होते हैं, बहुत ज्यादा, ऐसे कहा गया है। तीसरी बात यह है कि ये विद्यानगर जो है, जब आप जानते हैं जब ये प्रलय काल होने का समय आया था तो सब वेद जो है वो डूब रहे थे, तो भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया। बहुत लंबी कहानी है, भागवत में आती है, सत्यव्रत मुनि को छोटे से मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, फिर वो बड़े 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 बर्तनों में और जगह पे डालते गए, फिर भी समुद्र भी उनके लिए कम पड़ने लगा, इतने विशाल हो गए वो। तो बाद में समझ गए कि भगवान है, ये तो छोटे से मछली नहीं है, जरा जरा कुछ ही क्षणों में ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, हाँ कहाँ से कहाँ उन ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो भगवान मत्स्य अवतार, आखिर में उन्होंने बताया कि मैं भगवान हूँ, और कहा कि मैं ये आप सब लोगों को बचाने के लिए और वेदों को बचाने के लिए आया हूँ। तो भगवान मत्स्य अवतार, मत्स्य भगवान जो है वो सारे वेदों को और भक्तों को लेकर कहाँ आए, विद्यानगर में आए, नवद्वीप धाम पे आए। सारे वेद यानी सारा नॉलेज ज्ञान जो है वो यहाँ पर एकत्र हो गया एक जगह पर, इसलिए इसका नाम पड़ा विद्यानगर। और ब्रह्मा जी के जिह्वा से सरस्वती का जन्म हुआ, और सरस्वती की जन्म होने के पश्चात सरस्वती के वजह से भगवान ने अपने जिह्वा से भगवान का जो गौरव किया है वो भी इसी स्थान पे किया है। उसके बाद में जो हमारी ज्ञान की 64 शाखाएं हैं, अभी तक उसको पता भी नहीं है, हमने सुना था 18 शाखाएं हैं, यहाँ पर वर्णन किया है 64 शाखाएं हैं। उसमें आयुर्वेद भी है और टेक्नोलॉजी भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें ज्ञान की भी कई ब्रांचेस है, बहुत सारे फिलोसॉफी के ब्रांचेस है, ऐसे 64 ब्रांचेस जो है वो विश्वभर में भगवान की दया से जितने भी ऋषि हुए हैं उनका अपना अपना सिद्धांत है, जैसे जैमिनी का वैशेषिका सिद्धांत, कर्म मीमांसा सिद्धांत है, जैसे अपना अपना विशेष सिद्धांत जो है वो सब लोग लेके आए हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन सारे ऋषिगण, यहाँ तक कि दत्तात्रेय भगवान भी यहाँ पर आकर उन सारे 64 शाखाओं के ज्ञान का अभ्यास यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर ग्रेजुएशन होने के बाद में अपनी अपनी जगह पर प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। सो ये ज्ञान का रूट है, ये मूल है। वाल्मीकि भगवान ने नारद मुनि की कृपा से यहाँ पर रामायण को प्रकट किया है, फिर धन्वंतरी भगवान को यहाँ पर आयुर्वेद प्राप्त हुआ है, शौनक मुनि जो आप जानते हैं ना श्रीमद् भागवतम में, वो सूत गोस्वामी के सामने बैठकर प्रश्न कर रहे हैं, बड़े बड़े दिव्य विभूति थी वो। तो शौनक मुनि और मुनि बाकी सब मुनियों ने मिलकर यहाँ पर मंत्रों के वेद के मंत्रों का पठन किया है। शंकर भगवान ने यहाँ पर तंत्र की चर्चा किया है, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर वेदों का निर्माण किया है, कपिल भगवान ने यहाँ पर सांख्य शास्त्र निर्माण किया है, गौतम ऋषि ने तर्क और वाद का न्याय यहाँ पर निर्माण किया है, कानभुक ऋषि ने यहाँ पर वैशेष्य का तत्व ज्ञान जो है उसका प्रकाशन किया है। पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण भी यहाँ पर किया है। जैमिनी ऋषि ने कर्म मीमांसा ज्ञान यहाँ प्रकट किया है। वेद व्यास भगवान ने सारे पुराण यहाँ पर बैठ के लिखे हैं और नारद मुनि ने पंचरात्रि का विधि भी यहाँ पर लिखी है। अभी मैंने आपको आप बोलेंगे आपने तो कहा था अभी वो वृंदावन में कहा था, वो भगवान की दिव्य लीला है कि जो वहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर भी लिखा है, एक साथ में साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड सेम अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो सारे उपनिषद जो है जिनका निर्माण वेदव्यास के द्वारा किया गया हुआ हो गया वो भी व्यक्ति है। हाँ, हर एक श्रुति जो है ना व्यक्ति है, नदी भी व्यक्ति है, पर्वत भी व्यक्ति है, सरोवर भी व्यक्ति है, वो तो सब अलग अलग रूप में भगवान की सेवा करते हैं अपने अपने धाम में। तो उपनिषद और जो वेद होते हैं ना उसमें भगवान का प्रत्यक्ष वर्णन और अनुभूति प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान के ही भंवरे में हमको घुमाते रहते हैं। तो उपनिषद जो है वो एक बार परेशान हो गए कि अरे हमारा उद्धार कैसे होगा कि हम तो प्रत्यक्ष भगवान की किसी को परिचय कराते नहीं है, ऐसे अप्रत्यक्ष रूप में होता है, बहुत सारा फिलोसॉफिकल डिस्कशन होते रहता है तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो उसकी एक गर्ग संहिता में सुंदर कहानी आती है। ये सारे वेद उपनिषद जो है वो भगवान कृष्ण के पास आके उनकी याचना करते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने उनको गौलोक धाम का कुछ समय के लिए दर्शन दिया और गौलोक धाम में सारी गोपियां जो है भगवान की दिव्य भाव में एकाग्र होकर मग्न होकर सेवा करते हुए उन्होंने दर्शन किया। तो उनको बहुत प्रेरणा हुई कि हमको भी ऐसी सेवा करना है, हमको कब मौका मिलेगा। तो भगवान ने कहा आप सब लोग जाकर नंदगांव में जितने भी गोपों के घर हैं वहां पर कन्याओं के रूप में जन्म लेना। तो नंदगांव में जाकर इन वैदिक मतलब वैदिक ऋचाओं या तो श्रुति कह सकते हैं आप उसको, श्रुति गोपी कैसे उनको, वो गोपियों को श्रुति गोपी कहते हैं या वेद गोपी भी कह सकते हैं। तो वो नंदगांव के घर में छोटी छोटी गोपियों के रूप में जन्म लिया। वो राधा रानी यशोदा मैया को जब कृष्ण भगवान सेवा करते थे वो नहलाने का है, वस्त्र पहनाने का है, अलंकार पहनाने का है, तो उनको अलंकार देना या जल देना या टॉवल देना या ऐसे खड़े रहना, क्या चाहिए क्या नहीं, ये लेके आओ वो लेके आओ, ऐसे बहुत ही निम्न सेवा करते थे वो। बहुत देर तक उन्होंने भगवान के बाल स्वरूप की यशोदा के नेतृत्व में सेवा की। फिर भगवान ने उनको प्रेरणा दिया कि आप जमुना जी का स्तवन करो। फिर उन्होंने जमुना जी का कात्यायनी व्रत किया है कार्तिक के बाद एक महीने के लिए, केवल हविष्य ग्रहण करते हुए, दिन भर उपवास करते हुए केवल हविष्य, जो नमक मिर्च किसी के बिना होता है, पका हुआ चावल, उसको जमुना जी को भगवान को अर्पण करके उन्होंने ग्रहण किया है। और 30 दिन के बाद में फिर उस व्रत के फल के रूप में भगवान ने वहां पर उनके वस्त्र हरण किए। वस्त्र हरण करते समय जानबूझ के रेंगते हुए छोटे छोटे बालकों को लेकर आए थे, वही अकेले बड़े थे, साथी सब ऐसे क्रॉलिंग बेबीज, क्योंकि लीला ऐसे कर रहे हैं बड़े को कैसे लेके जाएंगे वहां पर। तो वहां पर फिर जब भी भगवान ने उनको वस्त्र छीन लिए उनके, तो एक तरफ से जब वो हाथ ऊपर करके बाहर आए तो उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वो एक स्पेशल तरीका है किसी को पत्नी स्वीकार करने का। उसके 5 दिन के बाद 5वें दिन भगवान ने उनको रास मंडल में रासलीला में प्रवेश दिया है और वैदिक ऋचाओं को गोपी के रूप में परमोच्च प्राप्ति वहां भगवान ने कर दी है। तो ये लीला भी जो है यहीं पर भी सिमिलर लीला हुई है कि गौरांग महाप्रभु के पास आकर उपनिषदों ने उनकी याचना और पूजा की है और गौरांग महाप्रभु ने उनको वही आदेश दिया है, वही कृपा की उनके ऊपर और उन सभी वैदिक ग्रंथों को देवियों को प्रेम भक्ति का दान दिया है उन्होंने इसी जगह पर। फिर इस स्थान की महिमा इतनी दिव्य है कि आगे आने वाले इसकी लीलाओं को समझते हुए जो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वो मतलब जो देवताओं को ज्ञान देते हैं, देवताओं को उपदेश देते हैं, देवताओं का उद्धार करते हैं, वो बृहस्पति जी इंद्र की दिव्य सर्व प्रकार के भोगों से पूर्ण अमरावती जो है उसको त्याग करके यहाँ पर जन्म लिया उन्होंने। उनके पिता का नाम था महेश विशारद, वो बड़े ज्ञानी थे, उनके पुत्र के रूप में सार्वभौम के रूप में उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। उनको हमारे गौड़ी संप्रदाय में सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में हम जानते हैं। वो इतने बड़े विद्वान थे जन्म से ही, इतने बड़े विद्वान थे कि उनको यहाँ पर विश्व की सर्वोच्च विद्यापीठ को स्थापन करना था और उस समय विश्व का सर्वोच्च विद्यापीठ मिथिला में था। वहां पर एक ऋषि थे जो उनके पास नौ नवन्याय यानी कि नाइन प्रकार के न्याय का जो ज्ञान था वो केवल उनको था, और वो किसी को ना टेक्स्ट बुक देते थे ना किसी को नोट्स लेने को अलाउ करते थे। लोग जो आना है जिनको वहां पर आना होगा और केवल सुनना होगा बस। तो ये बृहस्पति जो आए थे सार्वभौम के रूप में वो इतने बड़े श्रुतिधर थे कि वहां जाकर एक एक शब्द जो है उन्होंने उनका याद कर लिया जो भी उन्होंने सुना, पूरा जो नव ज्ञान का ज्ञान उन्होंने सुना कई महीनों तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोचिए कि उनको अगर जो भी सुन रहे हैं कई महीनों तक उसका हर शब्द उनको याद रखना है तो कितने सतर्क करते रहे होंगे वो। हाँ, कैन यू स्लीप इन द क्लास व्हेन दैट ऋषि इज गिविंग क्लास? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर बीच में सो गए तो उतना फिर वो फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा वो याद ही नहीं आएगा क्या भरेंगे उसके अंदर, तो क्या लाके लिखेंगे और क्या सिखाएंगे आगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो केवल खुद के लिए उसको नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अगर अनंत ऋषियों को मुनियों को आगे आने वाले सब भक्तों को वो ज्ञान देना चाहते थे, परोपकार की भावना से वहां पर गए थे, वो खुद का पीएचडी करने के लिए नहीं गए थे वो। तो हर दिन हर क्षण जितना भी सुना उसे याद किया और फिर लौट के विद्यानगर में आए और सारा उन्होंने उसको उतारा। तो वर्ल्ड का उस समय का विश्व का सब सर्वोच्च जो शास्त्र था वो केवल श्रुति रूप में मिथिला में था, वो ग्रंथ रूप में उन्होंने यहां पर प्रकट किया और यहां पर ऐसा विद्यापीठ खोला कि फिर मिथिला से भी ऊपर जाकर ये विद्यापीठ बना और सब लोग मिथिला की ओर जाने के बदले में विद्यानगर के आने यहां पर प्रवेश लेने के लिए उत्सुक हो गए। क्योंकि कलयुग में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेद व्यास जी ने शास्त्र क्यों लिखा? क्योंकि जानते थे किसी को याद रहने वाला नहीं है, याद रहने के लिए बार बार बोलना पड़ेगा और उसके बाद भी याद नहीं रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमारे सारे शास्त्र लिखित रूप में है, उनको पढ़ते रहते हैं, कितनी बार भी पढ़ेंगे तो याद नहीं आता कि अरे लास्ट टाइम भी यहाँ पर प्रवचन दिया था, अभी तो याद नहीं आ रहा है, वापस दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा याद आएगा, पूरा नहीं याद आएगा, क्या देखा था वो भी याद नहीं आएगा, यहाँ पर आने के वापस दोबारा याद आएगी। इसीलिए आप लोग कहेंगे हमारा मायापुर हो गया, तुम्हारा हो गया? हाँ हमारा भी हो गया। आपका जगन्नाथपुरी हो गया? हाँ जगन्नाथपुरी भी हो गया। ये आमतौर पर कर्मकांड लोग ऐसी बात करते हैं, हमसे मायापुर झाला, तुमसे झाला मायापुर? हमसे पुरी पण झाला, तुमसे चार धाम पण झाले, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग बार 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 उस जगह पर आते हैं क्योंकि हम लोग वहां का शास्त्र, वहां का सार, वहां का उपदेश उसको परमानेंटली हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बार बार आते रहते हैं। कुछ एक लाइन भूल गए होंगे, एक 15 लीला में से एक लीला भूल गए होंगे तो उसको भी याद करने के दोबारा आते हैं यहाँ पर, वो भी प्रणयी भक्तों के संग। ये सब साने हेरी बो आमी प्रणयी भक्त संगे, जिन लोगों को इन स्थानों के प्रति प्रेम है, आसक्ति है, उनके संग में हम लोग यहाँ पर आकर उनको बार बार देखना और सुनना चाहते हैं। तो हम सब लोगों को सार्वभौम भट्टाचार्य का अनंत कोटि बार धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस स्थान को आज यहाँ पर आप बैठे हो उसको परम ज्ञान का परम विद्यापीठ बना दिया। थोड़ा सा जरा और जब चैतन्य महाप्रभु का निमाई पंडित का जन्म होने का समय आया ना तो वो एक लीला हेतु यहाँ से चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। वो इतने प्रकांड पंडित थे कि जगन्नाथपुरी के राजा जो थे ओडिशा के राजा राजा प्रताप रुद्र, उन्होंने तुरंत अपने चीफ राजगुरु के रूप में उनको स्थान दे दिया। जैसे होता है ना विद्यापीठ का कुलगुरु, वैसे राजा के पास एक राजगुरु होता है, वो हमेशा उनके साथ ही बैठा रहता है। जैसे वशिष्ठ मुनि हमेशा राम के दरबार में बैठे रहते थे, दशरथ के दरबार में बैठे रहते थे, तो उस तरह से उनको स्थान दे दिया। और वो जाने के बाद में उनके सारे विद्यार्थी शिष्यगण यहाँ पर अपना कॉलेज आगे चलाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो निमाई पंडित जब भी बच्चे थे उसके बाद में फिर वो गंगादास पंडित के विद्याकुल विद्यापीठ में मतलब गुरुकुल में गए गंगा किनारे, और वहाँ पर जाकर फिर कुछ ही क्षणों में कुछ ही दिनों में वो पंडित बन गए और वहीं पर टीचर बन गए। वो अपने गुरु के गुरुकुल में और वहाँ पर व्याकरण सिखाने लगे और इतने विद्वान महाप्रभु चैतन्य निर्माई पंडित बन गए कि वो वहाँ से आते थे यहाँ पर और वो बड़ा आनंद लेते थे सार्वभौम भट्टाचार्य के जितने भी शिष्य थे उनको बुला बुला कर पकड़ पकड़ कर उनसे वाद विवाद करके उनको क्या कहते हैं उसको इधर लिखा है वैंक्विश्ड यानी नाम शेष करते थे, उनको चितपट कर देते थे, बड़ा आनंद आता था उनको। फिर ऐसे सबको परास्त करने के बाद देखो आप समझो आप भी अपने परीक्षा में गोल्ड मेडल थे, अरे आप भी विषय में गोल्ड मेडल थे, और आपको अपना एक स्थिति है कि भाई आपको इंट्रोड्यूस करेंगे तो बोलेंगे ये व्यक्ति ना ये विषय में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। और समझो कोई बच्चा आया और आपको उसने हरा दिया पूरा उसी विषय में, तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे ना देख मुंह दिखाने के, अरे हमारे सर को हरा दिया जो गोल्ड मेडल, सर को हरा दिया। ऐसे जो मान्यता प्राप्त विद्यार्थी थे वो सारे प्रगल्भ विद्यार्थी, वो भी खुद शिक्षक थे, वो सबको ऐसा परास्त किया, वो सब लोग यहाँ से भाग गए। उसके बाद में जब महाप्रभु गौरांग महाप्रभु यहाँ पर आते थे, और कोई है क्या बचने बचा हुआ उसको, तो वो ऐसे देखते ही दूर से भाग जाते थे। ऐसा बहुत सारा लीला यहाँ पर गौरांग महाप्रभु ने किया निमाय पंडित ने। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को प्रत्यक्ष यात्रा कराने के लिए लेके आए हैं। आप लोगों को पता है शायद कि महाप्रभु चैतन्य जब भी संन्यास लेकर चले गए तभी उनकी प्रेरणा से नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के लेकर उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा किया है। उनके साथ में बहुत जगह पर श्रीवास पंडित आगे भी कुछ लोगों ने साथ दिया है, लेकिन मेन जो यात्रा करु थे वो जीव गोस्वामी थे। तो जीव गोस्वामी को लेकर यहाँ पर आए हैं। उसके पहले इस जगह पर जो व्यक्ति आता है और निमाई के सब लोगों को वाद विवाद में परास्त करने की लीलाओं को सुनते हैं, उनको वरदान दिया है। सुनना चाहते हैं आप लोग? सब लोग जग रहे हैं ना वरदान लेने के लिए, नहीं तो वरदान बम्पर होके पीछे गिर जाएगा, है ना। तो उनको वरदान दिया है कि वो सारे व्यक्ति अज्ञान के जाल से मुक्त हो जाएंगे। और अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान होने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अज्ञान होने से। सबसे पहला ज्ञान है, ज्ञान अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन ज्ञान के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति की अनुभूतियां जो है वो ज्ञान होने पर ही हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे अच्छे पेड़ हैं हवा खा के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो ज्ञान है वो नहीं मालूम पड़ेगा आपको, तो आपको उस मन में जो महत्ता इसकी है महात्म्य जो है वो आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो ज्ञान पहला मार्ग है, और ज्ञान के मार्ग में क्या है? अविज्ञा है, सबसे बड़ा विघ्न है। तो अविद्या यहाँ पर नष्ट होने का वरदान दिया है जो यहाँ पर आते हैं केवल। हाँ, तो अभी नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी का जो संवाद है वो बहुत ही रोचक है, सोचा मैंने आपको उसको पढ़ के ही दिखाऊंगा उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जीव गोस्वामी को कि इस धाम में भगवान के कुछ भी अशुभ नहीं है, सांख्य और तर्क यहाँ पर बिल्कुल भी उसका रेलेवेंस नहीं है, यानी कि कोई सापेक्षता नहीं है। और जो लोग अपवित्र कार्य करने से दुष्ट बन जाते हैं वो भी यहाँ पर पवित्र हो जाते हैं। भक्ति जो भक्ति देवी है वो यहाँ पर निवास करती है, उसके सारे सेवक भी यहाँ निवास करते हैं, वो केवल भक्ति का ही प्रकटीकरण करते हैं। नवदा भक्ति भी यहाँ पर प्रकट होती है, यहीं रहती है, और कर्म और ज्ञान भी यहाँ पर भक्ति की सेवा करते हैं। कर्म और ज्ञान का जैसे भौतिक दुनिया में बाहर जैसे स्थान है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लोग कर्म और ज्ञान के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म और ज्ञान भी केवल भक्ति निर्माण करने के लिए सहायता करते हैं। और यहाँ के जो शास्त्र हम पढ़ते हैं यहाँ पर बैठकर, वो हमें ऐसी बुद्धि देते हैं कि उससे सारा रहस्य जो है भक्ति का वो प्रकट हो जाता है। यहाँ पर प्रौढ़ माया गौरांग महाप्रभु की सेवा के रूप में, सेवक के रूप में उपलब्ध है, और वो यहाँ पर जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करते हैं उनको अज्ञान के पर्दे से छुपाए रखती है, मतलब अज्ञान का पर्दा डालकर ज्ञान से अलग कर देती है। जो व्यक्ति वैष्णव का अपराध करते हैं उन्हें वो माया में रखती है, अपने वश में रख देती है, लेकिन यहां पर आकर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अगर वो अपने अपराध को छोड़ देते। तो यहां पर श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम का जो सागर है अनंत सागर वो प्राप्त हो जाता है। रियल नॉलेज इज नॉट इनऑस्पिशियस बट इट्स शैडो इज इनऑस्पिशियस, इसको भी भगवान ने नित्यानंद प्रभु ने माया का व्याख्या किया है। ओ जीवा देखिए गौरांग महाप्रभु की कृपा से आपके लिए सब कुछ प्रकट हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही आप यहाँ पर। देखिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर जीव गोस्वामी को बता रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं ज्ञान की जगह पर, इस जगह की कृपा से और भगवान की इच्छा से आगे जाकर आप बहुत ग्रंथ लिखोगे, आपके माध्यम से सारे शास्त्रों का सार प्रकट हो जाएगा। ऐसा नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के साथ में संवाद किया है। और उसके पहले जब राधा कुंड का वर्णन कर रहे तो कहते हैं, देखिए ये राधा कुंड की जगह है, यहाँ पर दोपहर को श्री चैतन्य महाप्रभु आकर कीर्तन करते हैं। क्यों दोपहर को करते हैं आइडिया? क्योंकि राधा कुंड में दोपहर को 11:48 पर राधा रानी अपने गिने चुने सखियों को लेकर पांडव घाट में स्नान करती है और वहीं पर लीला करती है कृष्ण के साथ। रोज का उनका फिक्स समय है 11 कुसुम सरोवर और 11:48 को राधा कुंड, और वहां पर अपने सखियों के साथ स्नान करती है। और राधा रानी का जो लीला है वही यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रकट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आकर दोपहर को हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक और लीला महाप्रभु ने की है, जिनको पढ़ाने के लिए जिनको मिलने के लिए आए थे ना उनका सबका वो क्या कहते हैं उसको, पाटी एंड पेंसिल, खड़ू वाणी पेड पेंसिल पेंसिल नहीं खड़ू वाणी का है पाटी पाटी क्या बोलते हैं उसको, स्लेट स्लेट बोलते हैं ना उसको। वो उस समय सब लोग पाटी पेंसिल से लिखते थे, तो सबसे पहले महाप्रभु ने सबका पाटी और पेंसिल तोड़ दिया सब लोगों का। अब क्या लिखेंगे नोट्स, क्या बनाएंगे नोट्स, क्या पढ़ेंगे, सब परेशान हो गए। तो उस समय कुछ लोग ऐसे थे, वो टाक है ना, टाक क्या बोलते उसको हिंदी में, टाक यानी वो एक पेड़ का ऐसा होता है उसमें मोरू 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 बराबर, उसमें वो लिखते थे भोजपत्र पर। और रूप गोस्वामी के जीव गोस्वामी जितने भी ग्रंथ है ना वो भोजपत्र पर लिखे हुए हैं। कितना कष्ट उठाते थे वो लोग आप सोचिए, वो भोजपत्र पर लिखने के बाद में उसको कुछ केमिकल कुछ ऐसा रसायन लगाकर उसको फिक्स करते थे और एक के बाद उसके ऊपर पन्ने रखते थे। अभी वो आगे पीछे हो गया तो सब गया ना, गड़बड़ हो गया ना पूरा। तो इतने बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, इस प्रकार से लिखे उसको। और एक ग्रंथ हाथ में लिखने के बाद में भी उसको प्रिजर्व करते थे और दोबारा कोई भक्त उसको लिखने को बैठा था तो उसकी कॉपी बन जाती थी। तो कैसा है, एक कॉपी नवद्वीप में है, एक कॉपी जगन्नाथपुरी में है, एक कॉपी मायापुर में है। तो इस कॉपी को ट्रांसफर करते हुए बहुत लीलाएं हो गई है, चोरी हो गई बीच में, गुम हो गए, क्या क्या हो गया उसके अंदर, क्योंकि एक ही कॉपी है। हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि हमारे पास हर बुक की एक एक कॉपी हमारे खुद के पास भी है, कभी कभी दो दो भी होती है हमारे पास। हाँ भक्तों के घर में गीता मैराथन के पास में कितनी गीताएं आती है, 10-10, 15-15 गीताएं इकट्ठा हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर ये प्रिंटिंग प्रेस का निकालने का मेहनत नहीं किया होता तो हम लोग भी ऐसे ही तड़पते, वेट कर रहे 4 के लिए कि निकला है शास्त्र, वहां से निकला है, अभी वो पहुंचेगा मायापुर, तब जाके वो एक कॉपी आएगी, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे उसको। तो वो जो टाक था ना लिखने का, वो एक लेकर महाप्रभु चैतन्य यहाँ पर आए और महाप्रभु ने क्या किया तो जमीन में घुसा दिया यहाँ पर। हाँ, और सबके आंखों के सामने उस पेन के जहां पर डाला था वहां से अनेक वृक्ष तैयार हो गए। कौन सा ये पीछे? हाँ, ये जो पेड़ है ना, ये सारे पेड़ जो यहाँ के हैं वो पेन के द्वारा बने हुए हैं। और आज तक के वनस्पति शास्त्र बॉटनी के अंदर इसका वर्गीकरण नहीं हुआ है, ना कोई कर पाया है। बड़े अद्भुत प्रिय पेड़ है ये, इन पेड़ों को आप गले लगाना जरूर, क्योंकि ये पेड़ कल्प वृक्ष है, भगवान की इच्छा से यहाँ प्रकट होते हैं, धाम के द्वारा यहाँ प्रकट होते हैं, धाम गौलोक धाम से प्रकट होते हैं। और भक्तों के आत्म उन्नति के लिए जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने का सामर्थ्य भी रखते हैं, कृष्ण प्रेम भी दे सकते हैं आपको, आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। केवल श्रद्धा से और भाव से इनको आलिंगन करते हुए मन की आध्यात्मिक इच्छाओं को इनके सामने गुप्त रूप में प्रकट करना चाहिए। तो यहां से जाने के पहले जरूर आप इन सब पेड़ों को गले लगाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ पढ़ के आपको दिखाना है। यहाँ पर जब नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु ना कृष्ण तो मतलब गौरा महाप्रभु उनके साथ में नहीं थे, वो तो संन्यास रूप में लीला कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। तो यहाँ पर आते ही उनको एकदम राधा कुंड का याद किया तो एकदम भाव में आ गए वो। अभी एक विशेष बात आपको सबको समझना है कि राधा कुंड इलाके में कभी भी बलराम जी प्रवेश नहीं करते। उनका आखिरी बॉर्डर है कुसुम सरोवर, वहीं पर दाऊ जी का एक मंदिर है और वहीं पर रहकर वो कृष्ण की जो अंतरंगोत्तम लीलाएं हैं राधा कुंड के घेरे में वहां दर्शन करते थे उनका। तो राधा कुंड की याद करके इतने भाव विभोर हो गए तो कोथाए कना है ऐसे पुकारने लगे, कृष्ण कहाँ है, अभी मुझे गाय को लेकर बैलों को लेकर जाना है, वो अकेला कैसे जाऊंगा, इतनी सारी गायों को अकेला में संभाल कैसे पाऊंगा, जाओ बुलाओ उसको बुलाओ। तो भक्त लोग बोल रहे महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में इधर नहीं है, मैं नहीं जानता कोना है ऐसा पुकारते। फिर उसके बाद में सब लोगों ने उनके चरणों का मसाज करना शुरू किया, ओ प्रभु नित्यानंदा, ओ भाई गौरंगा यहाँ पर नहीं है, वो संन्यास लेकर चले गए नीलाचल, हम सब लोगों को भिक्षुक बनाकर यहाँ पर छोड़ के चले गए। बोल रहे मेरा बुगुल लेके आओ, बफेलो हॉर्न लेके आओ, मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे गाय कहाँ गए, मुझे वाम को उनको लेके जाना है, मैंने सुना कृष्ण भगवान, कृष्ण जो है हमारा कन्हाई सो रहा है, उसको जगाओ, उसको उठा के लेके आओ, कन्हाई मैं उनके बिना जा नहीं सकता, ऐसे वो चिल्ला रहे। वो भक्त लोग बोल रहे नहीं, वो संन्यास लेके चले गए। कुछ देर बाद जब भाई चित्रा में आए तो उन्होंने एक्चुअली सुन लिया कि वो संन्यास लेकर नीलाचल चले गए हैं, तो इतने दुखी हो गए कि यही पर इस जगह पर बेहोश होकर गिर गए, वो सहन नहीं कर पाए, इतनी दुखी खबर दे रहे मुझे आप लोगों ने इतना दुख दिया है मुझे बताकर, चलो अभी हम चलते हैं नीलाचल को, अभी नीलाचल चलते हैं, मैं मेरे जीवन को चलाने में असमर्थ हो गया हूं उनके बिना, मैं भी जमुना में कूद जाऊंगा और अपने जीवन को अंत करूंगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं और जी गोस्वामी ये सुन रहे हैं कि इतना प्रेम है इनको गौरा महाप्रभु के प्रति, वो सुनकर वो भी बेहोश हो जाते हैं भाव विभोर होकर। नित्यानंद प्रभु जो है वो आध्यात्मिक भावनाओं के चरम सीमा पर थे, उस समय पर उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू किया इसी जगह पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
अरे ये सोचकर बोलना कि नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं अदृश्य अवस्था में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पुकारो सब लोग पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 सब लोग बोलो, उत्साह से बोलो, प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमें यहाँ से चंपा आटे की लीला आरंभ करनी है। तो चंपा हाटी क्षेत्र का भी कथा यहीं पर करना है। सब लोग तैयार है सुनने के लिए? तो सत्ययुग में यहाँ पर एक ब्राह्मण था जो कामलेखा सखी का अवतार था। कामलेखा सखी भगवान की ब्रज लीला में होती है। तो यहाँ पर ब्राह्मण बैठ के सत्ययुग में वराहा देव का पूजन कर रहे थे, क्योंकि चंपा हाटी क्षेत्र जो है वो कोल द्वीप में आता है। और उन्होंने वराह देव का पूजन किया शुद्ध भावना से, तो वहां पर एक पहाड़ पर वराह देव प्रकट हो गए हैं। तब अभी तो वराह देव ने अवतार नहीं लिया था, वो आगे लेने वाले हैं। उसके पहले ही उन्होंने गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप धाम में वराह देव का रूप का दर्शन दिया। उस सखी के सखी जो बनकर आई थी ब्राह्मण बनकर, उनको दर्शन दिया उन्होंने। तो वो जो पहाड़ है जहाँ पर वो प्रकट हो गए वराहदेव, उसका नाम पड़ा कुलिया पहाड़। और वो कुलिया पहाड़ जो है वो गोवर्धन से अभिन्न है। वो गोवर्धन तो हमारे अंतर्द्वीप में भी है, जहाँ पर चैतन्य मठ में आप लोग कुछ रहते हैं वहाँ पर भी गोवर्धन प्रकट हुआ है, लेकिन ये पहाड़ भी गोवर्धन के रूप में मानते हैं। उस तरह से गोवर्धन प्रकट हो गया। तो वराहदेव जो है वो उसको ब्राह्मण को कहते कि आपके भजन पूजन से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ, आपकी भक्ति से मुझे बड़ा आनंद मिला है। मैं इस कलयुग में आने वाला हूँ गोल्डन फॉर्म में, स्वर्ण रूप में आने वाला हूँ, सबको कृष्ण प्रेम बांटने वाला हूँ। उस समय आप द्विज वाणीनाथ के रूप में जन्म लोगे और मेरे लीला में आप सहभाग लोगे। तो ये द्विज वाणीनाथ कौन थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर पंडित, जो स्वयं राधा रानी का स्वरूप थे, उनके छोटे भाई थे। और चंपाहाटी में उनके स्वप्न में जब उन्होंने वहाँ पर भजन किया, उसके बाद में राधा कृष्ण का भजन किया, तो स्वयं गौरांग महाप्रभु ही उनके लिए प्रकट हुए नित्यान गदाधर पंडित को लेकर। गदाधर पंडित को लेकर गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए उसके लिए, इसलिए वहाँ पर गौर गदाधर की मूर्तियाँ हैं। और उनका अपने जीवन काल में द्विज वाणीनाथ ने सेवा किया है। और जब जीव गोस्वामी को लेकर नित्यानंद प्रभु वहाँ चले गए थे चंपाहाटी, उस समय एक रात को नित्यानंद प्रभु ने उनके घर में निवास किया था, और द्विज वाणीनाथ ने बड़े प्रेम से नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी का आदर सत्कार किया था। हरे कृष्णा। शायद वो सोते हुए उनको जगा रहे हैं। एक सेकंड मुझे देना जरा, थोड़ा सा नोट्स आगे पीछे हो गए हैं सब। ओके, सो जो कोलद्वीप जो है जहां पर चंपाहाटी है वो ललिता सखी का कुंज है। ये नवधा जितने भी नवद्वीप हैं उसमें एक एक सखी का कुंज है। तो कोलद्वीप में, और यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं ऋतुद्वीप में, ये भी यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। तो चंपाहाटी जो है वो जिस कोलद्वीप में है वो ललिता सखी का कुंज है, और वहाँ पर चंपकलता देवी की लीला है जो मैं आपको बताऊँगा। और पाद सेवनम इस नवदा भक्ति के अंग का वहाँ पर प्राकट्य है। और वहाँ पर श्री वृंदावन धाम का खदीरवन प्रकट है। आप लोग में से कितने लोग खदीरवन गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। खदीरवन में भगवान के वत्सपाल लीलाओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वत्सपाल लीला का मतलब यह है कि तभी भगवान को छोटे छोटे बछड़ों का जिम्मेदारी दिया गया था। एक 3 साल की उम्र में उनको बछड़ों का चराने का सेवा दिया गया, तो वो वत्स कहते हैं ना, बछड़े और बछिया और बछड़ा वत्स कहते हैं। तो उनको पालने वाले हो गए वत्सपाल। तो अपनी उम्र के 5 साल तक वो वत्सपाल बने रहे, और उसके बाद में गोपाष्टमी के दिन वो गोपाल बने। जब उनके 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में जब जन्माष्टमी 5 साल के बाद की हुई ना, तो सभी उनको लोगों ने बहुत चिढ़ाया उनको कि आप लोग, आप बहुत बड़े हो गए हो, फिर भी आपको नंद बाबा को आपके ऊपर विश्वास भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी बच्चों को चलाने को दे रहे हैं, ऐसा उनको बहुत खिंचाया उन्होंने। तो फिर गोपाष्टमी के दिन नंद बाबा यशोदा ने ब्राह्मणों को कंसल्ट करके फिर बड़े गायों का भार सौंप दिया। तो उसके पहले जो समय था उसका एक नियम था कि इनको बछड़ों को लेकर उतनी ही दूर जाना है कि नंद भवन के सबसे अग्रिम स्थान पर जाने के पश्चात आप खड़े रहेंगे और चारों ओर घूम के देखेंगे तो वो दिखने चाहिए। हाँ अभी आज उधर गया है, हाँ उसके आगे वो दर्शन जहाँ नहीं होता है वहाँ आगे जाना नहीं है, जहाँ पर देख सकते हैं वहीं जाना है बस। तो वो क्षेत्र जो है वत्सपाल इलाका क्षेत्र है, उसमें ये खदेर वन आता है और खदेर वन में वत्सपाल रूप के रूप में भगवान ने बकासुर का वध किया है। खदेर वन जो है वो उपनंद बाबा का वन है, वहाँ पर उपनंद बाबा का खिरक यानी कि जलाशय हुआ करता था और सब गायें जाकर वहाँ पर जलपान किया करते थे। तो भगवान भी अपने बछड़ों को लेकर उपनंद बाबा के वन में जाकर खिरक में जाकर जलपान अपने बछड़ों को किया करते थे। और उस सरोवर का नाम क्या है? माधव सरोवर। कुछ जगह पर लिखा है कल्पभेद के अनुसार कि नदी किनारे उन्होंने भगवान ने बकासुर का वध किया है, लेकिन गर्ग संहिता के अनुसार एक सरोवर के किनारे भगवान ने बकासुर का वध किया है, उसका नाम है माधव सरोवर। वहां पर कत्था के पेड़ हुआ करते थे। पता है पत्ता कत्था क्या होता है? वो पान को लाल रंग देता ना, हमारे ओट लाल लाल हो जाते हैं, वो कत्था जो है ना उसको खदीर कहते हैं। वो खदीर के वृक्ष वहां पर हुआ करते थे, इसलिए उसको खदीर वन नाम दिया गया। तो एक दिन जब भगवान वहां पहुंचे तो बछड़े बहुत प्यासे थे और तुरंत उन्होंने पानी वानी पी लिया। और भगवान थोड़ा एंड में पहुंचे वहां पर, तो बछड़े जब पानी वानी पीकर खड़े हो गए तो देखा क्या कि पहाड़ के समान एक सफेद बड़ा पहाड़ जो है वहां पर खड़ा है, बहुत दिव्य पहाड़, बहुत भव्य पहाड़। पहले कभी देखा नहीं उसके दारी, कई बार गए लीला करते हुए, लेकिन उस दिन वो पहाड़ नहीं था तो वो एक गीदड़ था, एक्चुअली एक बहुत बड़ा पक्षी था जिसका सर और चोंच जो थी आकाश में थी बादलों में, उसके पैर जमीन में थे सरोवर के किनारे। तो कुछ समझ में आने के पहले कि ये क्या है, यहाँ पर क्यों आया है, क्या कारण है, समझने के आने के पहले उसने चोंच खोला और भगवान को निगल लिया। कुछ समझ में आने के पहले ही निगल लिया तो सब ग्वाल बाल परेशान हो गए, अरे खाए रो, मतलब क्या, खा लिया, खा रहा है, इसका नाम क्या पड़ा, खाए रो है। तो लोकल नाम क्या है, खायरा, संस्कृत नाम क्या है, खदीर वन। तो सब लोग दुखी हो गए, डर के मारे भागने लगे। आकाश में देवता लोग भी देख रहे हैं, सब देवता खड़े हैं, जितने मेन देवता हैं, ब्रह्मा शिवजी देवी चंद्रदेव यमराज ऐसे गणेश जी ऐसे सबसे बड़े बड़े जो स्कंद यानी कि क्या नाम उनका गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय स्कंद वो भी खड़े हैं वहां पर। सब लोग इकट्ठा हो गए और सब लोग ने अभी सोचा कि भगवान तो गए अभी हमारे, अभी हमको भी प्राणांतिक युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि ये डू और डाई वॉर है ये। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड फेंका उसके ऊपर। तो क्या कहें आपको, ब्रह्मदंड का आज तक किसी ने तोड़ नहीं किया है, तो ये बकासुर ने ब्रह्मदंड को तोड़ दिया, केवल 2 फीट पीछे हट गया, फिर ब्रह्मा को ही भगा दिया उसने। फिर यमराज का दंड जो है उसको एक रावण कंस सब लोग डरते थे, वो यम दंड को उसने तोड़ दिया, यम भी भागने लगे। फिर भवानी ने तलवार निकाली, वो तलवार को भी परास्त कर दिया उसने। फिर अग्नि आए और अग्निअस्त्र भेजा, तो अग्नि के प्रभाव से क्या हुआ, कुछ उसके रोम जल गए बस और कुछ नहीं हुआ। फिर वायु आ गए वायुअस्त्र लेकर, तो वायुअस्त्र का मतलब क्या है आप देखे ना, अभी वो कितने तूफान आए अभी फिलहाल कुछ समय के पहले, 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर स्पीड से हवा आती है, अरे बिल्डिंग की बिल्डिंग भी उड़ जाती है, छप्पर तो छोड़ ही दो। ये तो वायुअस्त्र की बात कर रहे हैं, तो वायुअस्त्र नहीं, ये तो छोटा सा इधर उधर का थोड़ा सा माइन्यूट प्रेजेंटेशन है। वायुअस्त्र का मतलब क्या है, लोक के लोक उड़ सकते हैं, केवल 2 फीट जो है ना वायुअस्त्र ने इस पंछी को पीछे खदेड़ दिया, मतलब वायुअस्त्र जब पूरी शक्ति के साथ में आया तो केवल 2 फीट पीछे चला गया और उसके बाद वापस आगे आया और वायु को देव को भगा दिया उसने। फिर स्कंद आए, फिर गणेश जी आए, फिर यमराज आए, सब लोगों को भगे। एक समय ऐसा आया कि आकाश में एक दृश्य था कि सारे महान देवताएं जो है चारों ओर भाग रहे हैं और ये बकासुर को खदेड़ रहा है सब दिशा में, और कहते हैं कि किसी ने उन पर, चंद्र ने उन पर निहारे का असर चलाया, मतलब टू मच कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड। तो ये है ना 2 घटिका यानी कि 6 घंटे के लिए ऐसा बेहोश पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद में जो उठा तो सब देवताओं को भगा दिया उसने। तब तक तो ऐसे ही जागृत हो गया, आगे पीछे हो रहा था, लेकिन निहारिका असर से वो बेहोश हो गया। बस इतना ही। उसके बाद में जो गुस्सा आया उसको, वो सब देवताओं को भगा दिया उसने, कोई उसका बाल टसमस नहीं कर सका। तो उसके बाद में सब देवता जब हार गए, भाग गए आशा छोड़कर, तब अंदर जो भगवान बैठे ना, उसके अंदर है ना बैठे हुए, हाँ अंदर बैठ के आराम कर रहे हैं, सब घूम रहे इधर उधर, वो सबको खदेड़ रहा है, उनके साथ में ये भी घूम रहे हैं। तो सब असहाय हो गए, तो अंदर से भगवान उष्ण हो गए और आके कंठ में जाके रुक गए उसके, और एक्सपांड होने लगे गर्म अग्नि की तरह। तो ये बहुत आग बबूला हो गया, तो उसने निगल दिया भगवान को बाहर। फिर उसके और भगवान के बीच में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। भगवान ने कई बार उसको पूछ पकड़ कर पटका, उठाओ कर गोल गोल घुमा कर पटका, फिर वो तिलमिला उठा, फिर अटैक किया भगवान के ऊपर। फिर आखिर में उन्होंने, भगवान ने एक चोंच पर आप एक पांव रखा और दूसरे हाथ से, दोनों हाथ से वो फाड़ कर बकासुर का उद्धार कर। बोलो बकासुर वधकारी भगवान कृष्ण की, बोलो वत्सपाल भगवान की। इस तरह से इतना भयंकर बकासुर जो था, जिन्हें सारे देवताओं को लीलया यानी कि आराम से परास्त कर दिया, उसका भगवान ने वध कर दिया। तो ये कथा जो है वो नारद मुनि ना राजा बहुलाश्व जो मिथिला नरेश है उनको सुना रहे हैं। तो मिथिला के नरेश पूछते हैं, अरे यम दंड जिसका कोई उपाय नहीं कर सकता है, ब्रह्म दंड इनको परास्त करने वाला ये व्यक्ति कौन था, ये क्या इतिहास था उसको, इतनी शक्ति कहाँ से आई उसके अंदर। तो नारद मुनि को बताते हैं कि कौन था व्यक्ति है, ये ना हयग्रीव नाम के एक राक्षस था सत्ययुग में, जिसका शीश घोड़े का था, उसको वरदान था कि मेरे जैसा व्यक्ति ही मेरा वध कर सकेगा। तो भगवान ने ऐसा ही उदाहरण किया, उसके जैसा ही घोड़े के मुख वाला, और उसका वध कर दिया। तो उसका यह पुत्र था उत्कल, इतना तपस्वी और बलशाली था कि अपने तप के बल से उसने 100 दिव्य वर्षों तक देवताओं के सारे राज्यों पर राज्य किया था उसने। 100 ईयर्स सेलेस्टेड ईयर्स, सब गुफा में छुपे थे। तो ऐसे बल से और प्रभाव से मत्त होकर वो जगह जगह विचरण करने लगा, सब लोग कांपने लगे उसको देखकर। तो ऐसे घूमते घूमते वो जाजली मुनि के आश्रम में आया, और जाजली मुनि का ऐसा वर्णन दिया गया है कि वो साधु लोग होते ना, साधु लोगों का संग करने से साधुओं का प्रभाव वातावरण में उत्पन्न होता है। हम लोग कभी गुरु जी को मिलने जाते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, अभी क्या 50 प्रश्न पूछना है, अभी सबका सवाल उत्तर लिखना है, और जैसे उनको मिलने जाते हैं सारे प्रश्न ही भूल जाते हैं। बोले मैं किस लिए आया था, लगता नहीं कुछ पूछने जैसा है, अभी इतना शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है कि अभी क्या पूछे, लगता है जो पूछने आया था एकदम इनसिग्निफिकेंट था। वो साधु का भक्ति का प्रभाव होता है, उनके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे आप तो उनकी चेतना का अनुभव करते हैं, और अपना सारा जो छोटा मोटा दुख होता है ना वो भूलने लगते हैं हम लोग। तो ये जाजली मुनि के संग में रहते हुए उनका जितना क्षेत्र था उसमें सारे जीव जो थे वो मित्रता के आधार पर रहते थे। यानी कि कोई शेर जो है वो सिंह को गले मिला रहा है, सिंह जो है हिरण को गले मिल रहा है, और शेर जो है वो बाघ को गले मिल रहा है, ऐसे सब कोई किसकी हिंसा नहीं कर रहा है, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में वो आता है, और जाजली मुनि के आश्रम में एक हौद था, उसके किनारे बैठता है, उसके हाथ में एक नली थी, नली बांसुरी जैसी, बहुत छेद थे उसके अंदर, वो नली उसने ऐसा पानी में छोड़ दिया, ऐसे हाथ में पकड़ के छोड़ दिया, और मछली कुतूहल से उसके अंदर आने लगी, जैसे मछली आने लगी वो टक करके खाने लगा उसको, फिर छोड़ने लगा उसको, फिर दो चार मछली अंदर आते ही तुरंत मुंह में डालने लगा, ऐसा टाइम पास में कर रहा था वो गर्भ में। तो जाजली मुनि को खबर मिली, जाजली मुनि को वो आए यहाँ पर, देखे कोई तो सुंदर राज वस्त्र पहना हुआ बहुत ही तेज पुंज व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन उनके हौद में से मछली खा रहा है। तो कहते हैं देखो यहाँ पर सब लोग प्रेम से रहते हैं, कोई किसी का वध नहीं करता है, आप ये काम बंद करो। तो मुनि को देखता है ऐसे, फिर बांसुरी को डुबाता है, मछली आती है उनके सामने खा लेता है, और रुबाब से देखता है उनको। जाजली मुनि कहते हैं तुम्हें तुम्हारे बल का बड़ा गर्व हो रहा है और मछली खाने का बड़ा शौक है, जा तू बगुला बन जा। तुरंत तुरंत वो सुंदर शरीर जो था जिसपे इतना प्रकाश निकलता था, इतना अलंकार पहने हुए थे, वो सुंदर शरीर तुरंत एक गिदड़ में रूपांतर हो गया उसका। वो देख रहा, अरे बाप रे इतना सुंदर बन के आया था, इधर एक क्षण में तत्क्षण गिदड़ बन गया। तो जो अहंकार था वो एकदम चूर चूर हो गया, तुरंत जाजली मुनि के चरणों में गिर गया। महाराज माफ करना, माफ करना, मैं दोबारा ऐसे गलती नहीं करूंगा। महाराज ने कहा हमने एक बार बोल दिया सो हो गया, अभी इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम। नहीं महाराज बचाइए, मेरी चेतना शुद्ध हो गई है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे गर्भ में था, मद में था, मस्त हो गया था, मुझे आप माफ कर दीजिए। तो उनका फिर वो नम्रता को देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तुम पश्चाताप पर्याप्त कर चुके हो, लेकिन तुम्हें बगुला तो बनना ही पड़ेगा। जब श्री कृष्ण भगवान द्वापर में आएंगे तो उनके द्वारा आपका उद्धार होगा और पुनः आप अपने दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण उनका उद्धार करने का वध था, इसलिए कोई भी देवता उनका वध नहीं कर सका, सबके ऊपर हावी हो गए वो। और फिर श्री कृष्ण ने बहुत आसानी से उसका वध कर दिया और वो बकासुर का जो आत्म ज्योति थी ना भगवान में विलीन हो गई। तब जाकर उन्होंने प्रश्न किया है कि ये कौन था, इसका वर्णन गर्ग संहिता में दिया है। तो ये खदीरबंद की लीला है जो खदीरबंद वहां पर चंपाटी में प्रकट है। फिर ये जो खदीरवन है ये भगवान की गौचारण स्थली है, बछड़ों को जल देने की स्थली है और बछड़ों को जल देने के बाद विश्राम करने की भी स्थली है। तो ये चंपाहाटी जो है, अभी हम वापस सभी वृंदावन से यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो चंपाहाटी है वो पहले चंपक वन था। वहां पर चंपकलता देवी गुप्त रूप में आकर चंपा के फूल बिनकर मालाएं बनाकर राधा माधव की सेवा करती थी। आगे जाकर नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि आगे जाकर ये चंपा के इतने फूल वहां हुआ करते थे, लोगों को बिजनेस करने का मूड हुआ, व्यवहार ना कलयुग का प्रभाव से, तो चंपा बेचने का मार्केट बन गया यहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा चंपा हाटी, हाट यानी बाजार। मैं जानता हूं कि गर्मी हो रही है लेकिन प्रेम से सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, सॉरी नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, रुके यहाँ पर, गौर गदाधर का मंदिर है वहां पर और उसका भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो एक शिष्य थे नयनानंद बाबा जी महाराज, जो स्वयं ब्रह्मचारी थे, 1922 में वहां पर आए थे, अपने उम्र के 96 ईयर तक उन्होंने वहां पर सेवा किया है। आज वो नहीं रहे, उनके अनुयायी वहां पर सेवा करते हैं। तो ये जो चंपाहाटी है इसमें विशेष लीला जो है वो जयदेव गोस्वामी की है। वो बताया कि बिना चंपाहाटी का लीला समाप्त तो नहीं होता है। तो जयदेव जी 8वीं सदी में हुए थे और ब्रह्मचारी थे वो, तब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और अखंड ब्रह्मचर्य का निश्चय करके जगन्नाथपुरी में रहते थे, कभी मैं विवाह नहीं करूंगा ऐसा एकदम निश्चय करके आए थे। और एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में था, उसको एक उपवर कन्या थी और वो रोज जाकर जगन्नाथ के सामने रोता था कि जगन्नाथ भगवान मेरी कन्या के लिए कोई अच्छा वर दे दो, हे जगन्नाथ भगवान मैं इसका विवाह कैसे करूंगा, आप ही के सहारे हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, आप ही देंगे वर, आप ही देना, आप ही देना, आप ही देना। मैं रोज आकर कोई गिड़गिड़ा रहा है, तो भगवान भी तो व्यक्ति है ना, तो भगवान क्या करते हैं उसको एक स्वप्न देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा एक बड़ा भक्त है, वो ब्रह्मचारी बनकर पुरी में रह रहा है उसके पास अपनी कन्या को लेके जाना कल सुबह और उसको कन्या अर्पण कर देना, वो मना करेगा आपको लेकिन कहना मुझे भगवान का आदेश है और दे देना उसको। उसी समय भगवान जगन्नाथ जयदेव जी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कल तुम्हारे पास एक ब्राह्मण आएगा, अपनी सुंदर कन्या को लेकर आएगा, उसका आपका विवाह करना है। तो स्वप्नों में भी वो चिल्लाते हैं नहीं भगवान मैं तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आया था, आप क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मेरी इच्छा है कि आप गृहस्थ बनो। अगले दिन बड़े दुखी हो जाते हैं, स्वप्न में उठ जाते हैं लेकिन क्या करें भगवान का आदेश है। तो अगले दिन ब्राह्मण आते हैं और कन्या को सीधा दे देते हैं, कोई शादी वादी का कोई सिलसिला नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पुरोहित नहीं, कोई मेहमान नहीं, कुछ नहीं, स्वरण सौंप देता है, भगवान की इच्छा के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं। और फिर अपनी पत्नी, उनका नाम था पद्मावती, बड़ी भक्त थी भगवान की, वो बड़ी जगन्नाथ की, बचपन से ही जगन्नाथ के छाया में वो उसका बालपन गुजरा था। तो फिर ये दोनों भगवान की इच्छा से, जगन्नाथ की प्रेरणा से नवद्वीप धाम में आते हैं और गंगा किनारे में एक यहाँ पर जगह है, उसको कहते हैं बल्लाल दीर्घिका, लोकल लैंग्वेज कहते हैं बल्लाल दिघी बोलते हैं उसको, वहां पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इतने विशेष भक्त थे ये कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ बैठकर, वो झोपड़ी में बैठकर दशावतार स्तोत्र का निर्माण किया, लेखन किया, काव्य रचा। तो वहां पर लक्ष्मण सेन नाम के राजा थे एक क्षेत्र के, उनके पुरोहित के द्वारा ये जो दशावतार स्तोत्र था उनके हाथ में आया और वो सुनकर जो लक्ष्मण सेन भक्त था बेचारा राजा, ना प्रभावित हो गया बोले किसने लिखा है इसको, किसने लिखा है? तो पुरोहित कहते हैं कि ये एक संत आए हैं उस गंगा किनारे, ये बल्लाल दिर्गी में रहते हैं, उन्होंने लिखा है। तो मुझे अभी तुरंत दर्शन करना है उनका। वो दर्शन करने आते हैं तो ये जयदेव जी उनको कहते हैं कि देखो मैं किसी राजा वजह से मिलता नहीं हूँ, आप बहुत भौतिकतावादी हो, धनवन रखते हो, स्त्री रखते हो और भोग लेते हो, मुझे आपसे मिलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो राजा कहता है मेरे एक आपके से निवेदन है मेरा, कि इतने आप छोटी छोटी झोपड़ी में रहते हो, यहाँ पर एक चंपा चंपक वन नाम का सुंदर जगह है, वहाँ पर मैं आपके लिए, पहले बोलते हैं कि मेरे ही आश्रम में है, मतलब मेरे ही महल में आके रहो, तब ये डांट फटकार देते हैं उसको, दोबारा अभी आओगे ना यहाँ पर मैं तुरंत छोड़ के जगन्नाथपुरी चला जाऊँगा। तो चरणों में गिर जाते हैं, बोलते नहीं नहीं मैं आपसे ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि आपका भी प्रण बना रहे, मैं भी आपको ना मिलूँ और मेरी भी कुछ इच्छा पूर्ण हो जाए आपकी सेवा में, आप मैं आपको अपनी इच्छा से मिलने नहीं आऊँगा, जब आप बुलाएंगे तब आऊँगा, लेकिन मेरी सेवा स्वीकार कीजिए आप। और अगली बार जब आते हैं धोती कुर्ता पहनकर एकदम सिंपल ब्राह्मण बनकर आता है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो चरणों में गिर जाता है। तभी वो कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया है कि आप भक्त हो वैष्णव हो, मैंने आपको जानबूझकर भौतिकतावादी कहा था, मटेरियलिस्ट कहा था, लेकिन जिस प्रकार से आपने नम्रता का प्रदर्शन किया है मैं निश्चित रूप में जान गया हूँ कि आप एक श्रेष्ठ भक्त हो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने चंपा हटी में उनके लिए एक छोटी सी अच्छी झोपड़ी बांधी, थोड़ी सी विस्तार पूर्वक, और जब भी उनकी इच्छा होती थी वो उनका संग करने को आते थे। तो वहां पर उन्होंने तय कर लिया कि ये जयदेव जी मेरे गुरु बनेंगे, मैं उनके शिष्य बनूंगा। तो उनके परिवार के लोगों को जो थे ना फैमिली मेंबर्स कजिन्स वगैरह थे, उनको वो सहन नहीं हुआ, अरे जयदेव से राजा दीक्षा लेंगे, कितना सम्मान होगा उसका, कितनी संपत्ति होगी उसके पास, कितना प्रभाव होगा उसका। तो जलने लगे वो, और राजा को जो कि मिले और कहे कि अरे ये तो व्यक्ति जो है कुछ शास्त्र पढ़ा नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ तपस्या नहीं, कुछ साधना नहीं करता है, ये आपके गुरु बनने के योग्य नहीं है। लेकिन इनके मन में जयदेव जी को गुरु बनाने की इच्छा एकदम दृढ़ हो चुकी थी, और वो दीक्षा लेने के लिए ऐलान कर दिया राजा ने कि मैं भी जा रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। तो इनकी जलन जो है परिसीमा पहुंच गई, उन्होंने क्या किया, डाकुओं को हायर किया, पैसे देकर बोला इसको मार दो। तो जब पद्मावती जब गंगा जी में पानी लेने गई थी तब डाकू लोगों ने घर में आक्रमण किया और जयदेव जी के हाथ पांव तोड़ दिए, लिटरली तोड़ दिए, और गड्ढा खोदकर उनको जमीन पर गाड़ दिया, इतनी बीच की इतनी समय में बीच में। उसके बाद में पद्मावती घर आई, सब जगह दिख रही है पति कहाँ है, पति कहाँ है, पति कहाँ है। फिर वो उनको डर लगता है कि पति का क्या हो गया, तो रोने लगी, वो पुकारने लगी, कहाँ हो आप पतिदेव, स्वामी आप कहाँ हो, कहाँ हो, सब ढूंढते हैं। तो राजा भी आते हैं, बोलते हैं कि अरे पतिदेव गायब हैं। तो राजा भी आके ढूंढने लगते हैं। तो राजा जब ढूंढते हैं तो एक जगह चलते समय उनको गीत गोविंद के श्लोक जो है वो कान में पड़ते हैं, क्योंकि नए घर में जाने के बाद में जयदेव जी ने गीत गोविंद का लेखन शुरू किया था। भगवान के माधुर्य लीला के अंदर अति उत्कट प्रसंगों का वो काव्य है। आज भी संस्कृत विद्यालय में भी, जो भक्ति भक्ति का विद्यालय नहीं है, संस्कृत विद्यालय, उधर भी गीत गोविंद को एक परम काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो वह उन्होंने आरंभ कर दिया था, बीच में यह सब हादसा हो गया। तो जो रस्ते से चल रहे ढूंढे ढूंढे तो उनको गीत गोविंद गाने की आवाज आती है, वो भी जैसे कि जयदेव जी गा रहे हैं। तो कान लगा के सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि जमीन के अंदर से आवाज आ रही है। तो गड्ढा खोदते हैं तो हाथ पांव जिनके टुकड़े किए गए हैं वो जमीन के अंदर गाड़ दिए गए हैं, वो भी जमीन के अंदर गीत गोविंद का गायन कर रहे हैं। तो उनको तुरंत बाहर निकालते हैं, पद्मावती भाग भाग के आती है और सब लोग बोलते हैं कि पद्मावती ने ही इसका षड्यंत्र रचा है, क्योंकि पद्मावती व्यभिचारी स्त्री है, बहुत पुरुषों से उनका संबंध है, और पति ने उसको एक बार डायरेक्टली पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो क्रोध में आकर पैसे देकर गुंडाओं को खरीद कर उसने अपने पति का वध करवाया है। तो देखिए एक पति का देहांत होने का समय आ गया, दुनिया लांछन दे रही है, कितना संकट है उसके जीवन में। तो निराश होकर अपने पति का जैसे मृत्यु मानो ऐसा शरीर लेकर गंगा में उतरती है, गंगा जी को रो रो कर प्रार्थना करती है कि मैंने कभी भी अगर कोई व्यभिचारी ऐसा विचार मन में लाया नहीं है, अगर मैं सत्य में पतिव्रता स्त्री हूँ, सती हूँ, तो मेरे पति को शरीर को ठीक कर दो और पति को जीवन दान दो। तो गंगा जी के स्पर्श के प्रभाव से और पद्मावती के पतिव्रत के बल से और पवित्रता से टूटे हुए जो हाथ और पांव थे वो नॉर्मल हो गए, और मरे जैसे थे वो पूर्णता जीवित हो गए और उनको लेकर फिर वो घर आए। और लक्ष्मण सेन को पता चली खबर कि अरे ये चमत्कार हो गया, तो वो भाग भाग के आए दीक्षा लेने के लिए। तब जाकर उन्होंने जाकर वो क्या किया ना, जब ये पत्नी पति को लेकर गंगा में खड़ी है, तब राधा माधव के विग्रह जो है ना वो भी ये चोरी लेके जाते हैं। चोर पहले पति को मारकर डाल दिया गड्ढे में और फिर विग्रह को लेकर भी चले गए, तो आके देखते तो पति भी नहीं है और विग्रह भी नहीं है। फिर वापस जब आते हैं तो राजा फिर क्या करता है, वो डकैतों को पकड़ता है और वो विग्रहों को प्राप्त कर देता है। और फिर अच्छे हुए जयदेव जी जो गुरु महाराज है, पूछते गुरु महाराज इनको क्या दंड दे, तो बोलते हैं उनको बहुत सारा सोना दो और चार पांच गांव का राजा बना दो। तो बड़ा आश्चर्य होता है, अरे जिन्होंने जान की हमला किया उनके ऊपर, उनको बोल रहे गहना दो और सोना दो और गांव दे दो। तो गुरु जी की आज्ञा है तो पूर्ण कर देते हैं। तो गुरु राजा के जो सैनिक होते हैं ना, जो अधिकारी होते हैं मंत्रीगण, वो पूछते हैं अरे तुमको ये दंड देने के बदले में उन्होंने वरदान क्यों दिया, मतलब भेंट क्यों दिया। वो बोलते हैं कि वो बहुत पुराने चोर और गुंडे हैं, उन्होंने बहुत गुनाह किए हुए हमारे साथ मिलकर, और हमारा अरेस्ट हो जाएगा तो हम सारा सत्य उगल देंगे, तो हमारा मुंह बंद करने के लिए हमको ये उन्होंने घूस दिया है, ब्राइब दिया है, ब्राइब। देखो कितना मतलब संत के जीवन में कितना कष्ट होता है, बेचारे भगवान के भजन कर रहे हैं, अकेले किसी को कष्ट देने रहे हैं, फिर भी जनता उनको छोड़ती नहीं है, और इतना कष्ट प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भक्ति भक्त छोड़ते नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। तो वो जब आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, वो गुंडा थे, तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। बोलते एक तो ये दंड करने जैसे लोग हैं, योग्य लोग हैं, ऊपर से दंड के बदले में उपहार प्राप्त हुआ, वरदान जैसे प्राप्त हुआ, फिर भी संत की निंदा नहीं छोड़ रहे, तो बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, उसको सबको अरेस्ट करते हैं, सारा दिया हुआ वरदान छीन लेते हैं और सबको जेल में डाल देते हैं और फिर उनसे दीक्षा लेते हैं। लक्ष्मण से उनके शिष्य बन जाते हैं और फिर उसी कुटिया में रहकर वापस भजन करते हैं। तो राधा माधव के विग्रहों को उनकी पत्नी रोज जो है चंपा के फूल लाकर माला बनाकर ये दोनों मिलकर भगवान को अर्पण करते थे। तो राधा माधव ने उनको दर्शन दिया है और वरदान दिया है कि तुम्हारे हाथों द्वारा गीत गोविंद का निर्माण होगा और पूरे जितना समय सूरज चांद रहेगा तब तक गीत गोविंद का गौरव सब जगह चलता रहेगा। तो ये गीत गोविंद जो है ना वो बहुत ही उत्कट शास्त्र है, सामान्य नवसिखिया भक्तों को उनको पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है। क्योंकि अगर सामान्य भक्त काम वासना को नष्ट किए बिना और परम साधना किए बिना अगर ये ऐसे लीलाओं का वर्णन सुनने लगेंगे तो बजाय काम वासना नष्ट होने के काम वासना उत्पन्न हो जाएगी शरीर के अंदर, मन के अंदर। इसलिए केवल परमहंसों के लिए इसका लेखन का आदेश है। तो जो राधा माधव दर्शन दिए उनको, तो उन्होंने कहा कि हम जगन्नाथ भी हैं, जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में रहते हैं और आपके द्वारा लिखा गया जो गीत गोविंद है हम स्वयं सुनेंगे, हमारे दिनचर्या में एक बार जरूर सुनेंगे। आज भी आप जाएंगे ना जगन्नाथपुरी में, रात को 11:30 बजे एक विशेष वेश भगवान करते हैं, उसका नाम है बड़ो श्रृंगार वेश। उसमें वो जिस वस्त्र पर गीत गोविंद के श्लोक छपे हुए हैं, पहले तो बुनते थे उसको, अभी आप छपते हैं, उसको कहते हैं गीत गोविंद खंडुआ। वो जो गीत गोविंद लिखे हुए श्लोकों का जो वस्त्र है उसको भगवान फेटे के रूप में धारण करते हैं, फिर चंदन लागी सेवा होती है उनकी। और 11:30 बजे गोपियों के भाव में जगन्नाथपुरी वासी 11:30 बजे उनको गीत गोविंद सुनाते हैं। ये गीत गोविंद का इतना महात्म्य है, इतना जगन्नाथ को प्यारा है ये, कि एक बार एक देवदासी, वो भी अलग विषय है देवदासी कौन है, लेकिन एक स्त्री भक्त भगवान की जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं होता है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, अलग अलग मंदिर का नियम अलग अलग है, तो वो देवदासी एक बार जगन्नाथ वल्लभ गार्डन जो है वहां पर बैठकर गीत गोविंद गा रही थी, तो जगन्नाथ जी इतने विभोर हो गए भाव से कि अपना ऑल्टर जो है ना वो छोड़ के वो भागे, उनका भोजन के लिए दरवाजा बंद किया, तो भी वो अपना वेदी छोड़कर जो भागे और जंगल में से भागे तो उनके वस्त्र फट गए कांटों में अटक कर, और सारे वस्त्र फट गए और वो देवदासी के सामने खड़े हो गए। देवदासी ने पूरा गीत गोविंद सुनाया, बड़े भाव विभोर कर जगन्नाथ ने सुना। जब गीत गोविंद समाप्त हो गया तो भगन जगन्नाथ जी भाग भाग कर वापस वेदी में खड़े हुए। जब पर्दा खुला तो पुजारी का देखते हैं सारे वस्त्र फटे हुए हैं, जब भोजन लगाया था तो सब वस्त्र थे श्रृंगार के, वो अच्छे थे, सब वस्त्र फट गए। तो उनको बड़ी शंका हो गई, कोई चोर तो अंदर आता होगा, कोई पता नहीं कोई बालक अंदर आता है, कोई उदंड व्यक्ति अंदर आता है, कोई द्वेषी व्यक्ति अंदर आता होगा, क्या मालूम कहां से प्रवेश करता है। इट हैज बिकम वेरी टॉपिक ऑफ कंसर्न कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने प्राइवेट जगह पर इतनी रक्षा हो रही जगन्नाथ की, वहां पर कैसे हो सकता है ऐसे? ये पूरा जगन्नाथपुरी के वेदी से गर्भगृह से बात फैली पूरे जगन्नाथपुरी में। तो रात को जगन्नाथ जी ने हेड पुजारी को स्वप्न दिया, तो बताया कि आज मैं खुद जंगल भाग गया था आवेश में, तब मेरे सारे वस्त्र मेरे फट गए, कोई यहाँ पर आके मेरे वस्त्र फाड़े नहीं है, मैं खुद ही गया था, क्योंकि मुझे ये गीत गोविंद बड़ा पसंद है, मुझे यही पर सुनाया करो उसको। तो फिर वो प्रथा शुरू हो गई जगन्नाथपुरी के मंदिर में गीत गोविंद सुनाने की, ऐसा गीत गोविंद है। तो बाय द वे रोज लिखते थे बैठकर, और पत्नी राधा माधव की सेवा करती थी, उनकी भी सेवा करती थी। तो प्रसंग ऐसा आया कि वो प्रसंग में राधा रानी भगवान से रूठी हुई है, भगवान राधा रानी जो रूठती है उसकी लीला मान मंदिर में होती है ना, मानगढ़ जानते हैं ना बरसाने में, वहां पर राधा रानी रूठ कर बैठ जाती है, लेकिन वहीं पर नहीं, वो जमुना पार जाकर एक जगह है मान सरोवर, वहां पर जाकर बैठी हुई है, कई जगह बैठी हुई है मान सरोवर मान करते हुए, मान सरोवर में वो मान करते हुए बहुत रोई है वो, और उसके बाद में वहां पर सरोवर पैदा हो गया है जिसमें शिव जी ने स्नान किया है, और वो महादेव गोपेश्वर महादेव बने हैं और रास मंडल में उन्होंने प्रवेश किया है। तो ये मान मंदिर में ऐसा है कि कई कारण है भगवान के ऊपर क्रोध करने का। एक बार भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो, एक तो भगवान ने पहले श्रृंगार किया राधा रानी का, राधा रानी ने कृष्ण का श्रृंगार किया, दोनों ने श्रृंगार किया, फिर राधा रानी ने कहा मेरे श्रृंगार का वर्णन करो, भगवान एकदम निःशब्द हुए कि कैसे वर्णन कर सकता हूँ, इतना अद्भुत सौंदर्य है कि दुनिया की कोई वस्तु उसमें तुलनात्मक नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, तो सब जगह ढूंढते हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो आकाश में देखते हैं। तो तब पूर्णिमा के चंद्रमा जो है ना बहुत सुंदर वहाँ पर दर्शन दे रहे थे, तो उनको लगा ये ठीक है, तो भगवान ने कहा आपका मुख कमल जो है वो चंद्रमा की तरह है। तो बजाय खुश होने से राधा रानी क्रोध करती है, कई कारण है, एक कारण बता रहा हूँ आपको। तो क्यों वो क्रोध करती है, क्योंकि कहती है कि आप चंद्रमा की तुलना मुझसे कर ही कैसे सकते हैं, चंद्रमा जो है वो हर दिन घट जाती है और बढ़ती है, घटता बढ़ता सौंदर्य चंद्रमा का है, हमारा सौंदर्य जो है चिरंतन है, हमेशा बढ़ने ही वाला है, ये तो बढ़ता भी है और घटता भी है, हमारे सौंदर्य में कोई दोष नहीं है, कोई दाग नहीं है, और चंद्रमा पर दाग है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारा सौंदर्य कभी ग्रहण से आयुक्त नहीं होता है। आठ कारण बताए उसने, चंद्रमा जो है वो पर तारे पर ग्रह जो है उन पर डोरे डालते रहते हैं, और हम पतिव्रता हैं, हम केवल आपके लिए समर्पित हैं, द मोस्ट चेस्ट ऑफ ऑल, ऐसे बहुत सारा वर्णन करती हूँ, और ये सब कहकर रूठ कर चले जाती है, पर रोते बैठ जाते हैं। फिर ललिता जी आती है बड़े दुखी होकर, कृष्ण रोते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। अब ये प्रसंग जो है ना, पहले कृष्ण भगवान बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, सखियों को बुलाते हैं, खुद विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, अगली बार कोई नई उपमा दूंगा आपको, इस बार माफ कर देना, सोचा यही बेस्ट था इसलिए बोला, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोला, मैंने आपका अपमान करने का नहीं सोचा था, मेरे मन में कुछ विचार नहीं थे, अभी माफी चाहता हूं करके बहुत कोशिश किया। फिर सखियां आई, सखियों ने उनकी तरफ से गिड़गिड़ाए, फिर भी नहीं मानी, ललिता वहां जा रही है, जाओ ललिता मना के आओ, तो ललिता जाती है तो ये दो कदम और पहाड़ पे चढ़ जाती उनको टालने के लिए। फिर ललिता इनको लेके जाती है, उनका हाथ पकड़कर भगवान का हाथ उसके हाथ से मिलाना चाहती है, तो वो झटकती है हाथ उनके, हाँ ये हो जाएगा अभी तो फिर वो और ऊपर जाती है, तो वापस आती है कृष्ण के पास, कृष्ण बोलते दोबारा चले जाओ, वो वहां झटक देती है, आवत जावत हार गई री, सूरदास जी लिखते हैं, ललिता जी कहते हैं मैं हार गई, अभी यहाँ पर जाना तो वहां पर टॉस करते, यहाँ पर भी टॉस करते हैं, पता नहीं एक फुटबॉल की तरह हो गई हूँ मैं, गेंद की तरह हो गई हूँ, वो यहाँ से ठुकराते हैं, मैं आप बोलते जाओ जाओ जाओ, तो फिर सबसे टॉप पे बैठ जाती हूँ। तो बीच में एक जगह एक समय पर भगवान अपना शीश जो है मोर मुकुट वाला वो उसके चरणों में झुकाते हैं, और अपने आंखों से गिरते हुए आंसुओं से राधा रानी के चरण धोते हैं, फिर भी वो नहीं मानती। अब ये प्रसंग जो है वो जयदेव जी दर्शन कर रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं, उनको दर्शन हो रहा है, सारा गीत गोविंद जो है वो उन्होंने दर्शन किया हुआ जो है वो लिख रहे हैं, वो काव्य, तो वो देख रहे हैं कि अभी भगवान मना मना के थक गए, अभी भगवान उनके चरणों में मोर मुकुट वाला सर रखने वाले हैं, तो उनकी लेखनी बंद हो जाती है। हाउ कैन आई राइट दिस, परम भगवान परम पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर परात्पर सौंदर्य वाले भगवान कैसे राधा रानी के चरणों पर अपना सर रख सकते हैं। तो अभी मैं आई कैनॉट राइट, तो चले गए वो। बोले देवी पद्मावती मैं भी गंगा में स्नान करता हूँ, थोड़ा सा मेरा दिमाग गर्म हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या कैसे लिखूँ इसको, हाँ बड़ी अपराध हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ये तो पहला ही प्रसंग देख रहा हूँ मैं, थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे विचार करने के लिए। नदी में स्नान करता हूँ, आप भोजन तैयार रखना, मैं आता हूँ भोजन करता हूँ और थोड़ा विश्राम लेके सांस लंबी लेके फिर सोचता हूँ कि क्या लिखना है उसके अंदर। गए निकल के, अरे गए गए कुछ ही क्षण वापस आ गए, बोलते देवी जाओ जाओ किताब लाओ मेरी, मुझे लिखना है कुछ, अभी मुझे याद आया लिखना है, मुझे ठीक से लिखना है। तो मोतियों जैसे अक्षरों से उन्होंने वो श्लोक जो है ना वो पूरा किया। सब लोग बोलेंगे उस श्लोक को, स्मर गरल खंडनम, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम। इसका मतलब है राधा रानी आपका मान और आपका विरह जो है वो एक भयंकर अही यानी सांप के विष की तरह है जो मुझे जला रहा है, हाँ मेरा हृदय खंडन कर रहा है वो। आप अपने पद पल्लव यानी चरणों के जो फूल की तरह आपके चरण हैं मुलायम, उन चरणों का आप मुझे आश्रय देना, उदार होकर मुझे आप माफ कर देना, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो ये श्लोक जो है वो जयदेव जी ने तुरंत लिख दिया अपने मोती जैसे अक्षर में लिख दिया और बोले पद्मावती बहुत भूख लग रही, जल्दी खाना खिलाओ। आज तक के जीवन में कभी भी जयदेव जी इतने भूख से व्याकुल नहीं हुए थे और ऐसा भावना आज अभी अभी जल्दी खिलाओ भूख लग रही है ऐसा कभी कहा नहीं था, बड़े शांत और इंद्रिय निरोध की प्रवृत्ति थी उनकी। तो पद्मावती बड़े प्रेम से जल्दी जल्दी आकर पूरा परोस लिया खाना और जल्दी जल्दी खाए और दोबारा चले गए। वो दोबारा खाकर चले गए ही नहीं है तो फिर लौट के आए, तो देवी भोजन खिलाओ भूख लग रही है। मतलब स्वामी अभी तो भोजन किया आपने, मतलब क्या बात कर रहे हैं, मैं तो नदी में स्नान कर रहा था, चिंतन कर रहा था क्या लिखूं क्या लिखूं। अरे नहीं स्वामी आपने तो अभी आया और आपने बताया किताब लेके आओ, ग्रंथ का मैं लेके आई, आपने उसको पूरा किया। बोले कैसे बात कर रहे हो आप, मैं तो अभी आया हूँ पहली बार, कहाँ पर है वो किताब, थोड़े आपने तो अंदर रखी, मुझसे मांगी मैं दी और भोजन करके वो आपने अंदर रख दी, मैंने भी अंदर रख दी उसको। तो अंदर गए अपने लेखन जगह पर तो देखा तो मोतियों के अक्षरों में ये श्लोक लिखा हुआ था और जो उनका था ना डाउट और मन में जो संकोच था वो श्लोक भगवान ने पूर्ण किया था। तो समझ गए कि स्वयं भगवान श्याम सुंदर राधा माधव माधव जी प्रकट होकर उन्होंने इस श्लोक को पूर्ण किया है। तो कहते हैं कि अरे देवी आप इतनी भाग्यशाली हो, आपने कह रहा कि आपने भोजन भी किया है, साक्षात माधव जी ने आज आपके हाथ का भोजन किया, आप कितनी भाग्यशाली हो, ऐसे बोलकर वो बेहोश हो गए और ये बात सुनकर पद्मावती बेहोश हो गई। शी कुड नॉट बिलीव कि मैं पहचान नहीं पाई भगवान को। दोनों होश में आए और उन्होंने दोनों को भगवान का बड़ा गुणगान किया उन्होंने और ये जो लीला है वो चंपाहाटी में हुई है और इस तरह से आगे गीत गोविंद का जो है आगे पूर्ण किया गया उसको। फिर जब गौरांग महाप्रभु ने जयदेव जी को दर्शन दिया है और जयदेव जी को भगवान ने कहा है कि मैं आपके भजन से भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और आपका गीत गोविंद जो है जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा, अभी ये 8वीं सदी की बात चल रही है और गौरांग महाप्रभु कौन सी सदी में आए, 15वीं सदी में आए 1486, उसके बाद वो जवान हुए उसके बाद में उन्होंने गीत गोविंद सुनना आरंभ किया। तो जब मैं आऊंगा गौरांग महाप्रभु के रूप में तब मैं नित्य रूप से गीत गोविंद का आस्वादन करूंगा तो मेरे, और ये भी कहा कि जगन्नाथ भगवान भी आपके गीत गोविंद का आस्वादन करेंगे, दोनों बात गौरांग महाप्रभु ने कही। लेकिन बीच में आपने बात बात में लक्ष्मण सेन से कहा था कि आप अगर दोबारा ऐसे गुस्सा की करोगे तो हम जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, अभी जगन्नाथ भगवान आपको याद कर रहे हैं इसलिए आपको जगन्नाथपुरी जाना होगा। और गौरांग महाप्रभु ने अपने नवद्वीप धाम का भी गौरव किया है कि ये धाम कैसे ज्ञान से परे हैं, मुक्ति से परे हैं, यहाँ पर कोई माया त्रिगुण टिकता नहीं है, यहाँ केवल प्रेम प्राप्त होता है। और वैसे अनुभव उन्होंने किया था, गौरांग महाप्रभु का दिव्य स्वर्ण रूप देखकर वो बहुत भाव विभोर हो गए थे, अपने आप को भाग्यवान समझने लगे। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु स्वयं बोलते कि आप अभी कुछ समय के लिए पूरी चले जाओ तो बड़ा अपने भाग्य को कोसते हो कि हमने कुछ अपराध कर लिया, भगवान को कुछ दुखी कर दिया कि वो नवद्वीप धाम जैसे दिव्य धाम को छोड़कर जाने को कह रहे हैं। बोले मैं आपको यहाँ से अपराध के लिए नहीं जाने को कह रहा हूँ, मैं जगन्नाथ के रूप में विराजमान वहां पर हूँ, मैं उस रूप में आपके लिए बड़ा व्याकुल हूँ, इसलिए कुछ समय आप जगन्नाथ की सेवा करिए, उनको गीत गोविंद सुनाइए, फिर जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो आप दिव्य रूप में चिरंतन काल के लिए नवद्वीप में दहकर विराजमान हो जाएंगे। तो थोड़े से संतुष्ट हो गए, लेकिन जब निकले वहां से महाप्रभु के आदेश के अनुसार, तो ऐसा लिखा है, नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि जयदेव जी ने अनंत बार मुड़ मुड़कर गंगा जी को नवद्वीप धाम को निहारा और आंखों में अश्रु लेकर फिर फाइनली पीठ दिखाकर पूरी चले गए। और फिर महाप्रभु जी के आशीर्वाद के अनुसार जब उनका शरीर छूटा जगन्नाथपुरी में, तब जाकर वो वापस नवद्वीप में आकर चिरंतन निवास करते हैं चंपाटी स्थान में। बोलिए जयदेव गोस्वामी महाराज की जय, पद्मावती देवी की जय। हम सब लोगों को यहाँ पर प्रणाम करना चाहिए। ये ऋतुद्वीप है, वो कुलद्वीप है, जयदेव जी की लीलाओं को याद करना चाहिए कि संत लोग हमें उपदेश कराने के लिए, हमें कृपा देने के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। उनका भौतिक सो कॉल्ड तथाकथित जीवन जो है वो कितना कष्ट में होता है, लेकिन वो बड़े धन्यवाद की भावना से उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हम लोग उनको याद करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे जयदेव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।